रूप हूँ। इस स्मृति से मन में स्पष्टता और दिल में स्वच्छता आती है।
Medical Wing of Ramakumaris presents a 3-day mind-body medicine e-conference. Spiritual dimensions in healthcare, the time is now.
Namaskar, mind-body medicine conference ke दूसरे दिन के शाम के सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र के हमारे प्रथम वक्ता डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हैं, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बहुत ही जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। इन्होंने अनेकों किताबें लिखी हैं, अनेकों टीवी प्रोग्राम्स पर माइंड और वेलनेस से रिलेटेड बातों पर इनके हजारों कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इनके कार्यक्रमों से लाभ लेकर अपने आप को, अपने मन को अच्छा रखने के बारे में भी ध्यान रखने लगे हैं। हीलिंग माइंड्स, इस विषय पर डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हम सबसे रूबरू होंगे। मन को हील करना क्या संभव है? क्या मन को हील किया जा सकता है? ये कुछ प्रश्न आपके भी मन में होंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर अवधेश जी से।
जब बात चलती है हीलिंग की, तो आज के समय में क्योंकि अचानक पूरे विश्व का जैसे फोकस ही है वो हेल्थ के ऊपर आ गया है, और बहुत जरूरी बात भी है और एक तरह से मैं कहूंगा कि अच्छी बात भी है, क्योंकि जब तक हम हेल्दी नहीं हैं, तब तक जो भी हम अपने जीवन में चाहें वो अचीव नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर कई बार हेल्थ का मीनिंग क्या है, वहां से शुरुआत करने की जरूरत हो जाती है। हेल्थ का मीनिंग जैसे कि WHO की डेफिनेशन में है कि हेल्थ जो है वो सिर्फ बीमारी का ना होना ही नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होना है। सो हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट अ पॉजिटिव सेंस ऑफ वेलबींग इन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इनमें से कई बार ये बात भी आती है, खासतौर पे फिजिशियंस के सामने, कि क्या चीज प्राइमरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस जो है वो बॉडी पे रहा है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ी हैं, क्योंकि उस चीज को कहीं ना कहीं एक फिजिकल रूप में टेक्नोलॉजीज देख सकती हैं। तो चाहे वो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिनके द्वारा हम शरीर के अलग अलग हिस्सों को बाहरी रूप से देख पाते हैं, या आंतरिक रूप से कुछ कैमरास डाल के देख पाते हैं, या कुछ केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे होते हैं उनको ब्लड टेस्ट के द्वारा देख पाते हैं, या कुछ टिश्यूज को लेकर हम देख पाते हैं कि किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या इम्यूनिटी हमारी कितनी है उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट है। तो इस तरह से पिछले 30-40 वर्षों में खास तौर पे साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि कहीं ना कहीं इस भागा दौड़ी में शरीर को बेहतर रखने के लिए जो हमारी बहुत सदियों की प्रैक्टिसेस थी, चाहे शरीर के लिए ही, चाहे वो सही खान पान सही समय पे हो, या सही रेस्ट या नींद सही समय पे हो, सही भोजन किस रूप में हमारे शरीर को बेस्ट रहता है, या हमारे जो संबंध हैं उनका भी जो शरीर पर असर पड़ता है, उन चीजों को हम टेक्नोलॉजी के बीच में भूल गए, और साथ ही साथ एक और बड़ी डायमेंशन को भूल गए कि शरीर को चलाने वाली जो पावर है वो हमारी एक आंतरिक शक्ति है जो कि कॉन्शियसनेस है, और वो हमारे मन के द्वारा शरीर के सारे प्रोसेसेस को हर क्षण चलाती है। और ये जो है, हालांकि ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम अगर उसकी गहराई में जाते हैं तो बड़ा वंडरफुल लगता है। वंडरफुल इसलिए क्योंकि बिना कोई एफर्ट किए बाहर की कोई भी और टेक्नोलॉजी हो, वहां पे किसी व्यक्ति को या किसी प्रोग्राम को उसको चलाना पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो एक तरह से ऑटोमेटिकली है, लेकिन उस ऑटोमेटिकली होने के पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज ये है कि अगर हमारा मन सशक्त है, उसकी पावर्स जो हैं वो पूरी तरह से रेडिएट करती हैं, तो जितने भी शरीर में प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो ब्लड के द्वारा हो रहे हैं, चाहे वो नर्व्स के द्वारा हो रहे हैं, या वो एनर्जी फील्ड्स में हो रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस ठीक चलते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से हमारे मन की जो एनर्जीज हैं या जो हमारे मन की अलग अलग पावर्स हैं उनकी तालमेल में कमी आ जाए या गड़बड़ होनी शुरू हो जाए, तो फिर हमारे शरीर पर भी उसका असर आता है और साथ ही साथ हमारे मन पर भी उसका असर आता है। उसी से जुड़ी हुई एक और चीज है जो कि अब समझ आ रही है बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट जो हैं उनको, कि जो हमारे बाहर के संबंध हैं, वो चाहे दूसरों से हो, जो कि हमारी रिलेशनशिप्स हैं, या जो हमारे प्रकृति है उसके साथ हो, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम अकेले में कुछ नहीं है, हम एज अ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि दूसरी लाइफ फॉर्म्स के साथ तालमेल बना के चले तो हम एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से ये भी देखने में आया है कि चाहे वो पोल्यूशंस हो, चाहे वो डिफरेंसेस हो इकोनॉमिक स्टेटस में और उसकी वजह से, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे वो वायलेंस हो व्यक्तियों के बीच में या देशों के बीच में, या जिस तरीके से हम प्रकृति को नोच रहे हैं उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर एक तालमेल जो पहले होना चाहिए था, या सालों से व्यक्ति और प्रकृति के बीच में तालमेल होता था, वो आज के समय में उतना सशक्त नहीं है। और उसकी शुरुआत जो है, उसकी शुरुआत सिर्फ हमारे मन से हो सकती है, क्योंकि हमारा मन ही अपने शरीर को भी ठीक रख सकता है, अपने दूसरों के साथ संबंधों को भी ठीक रख सकता है, एट इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, वर्क लेवल, सोसाइटी लेवल, और फिर वो जो समूह है लोगों का और उनकी जो सोच है या उनके जो संस्कार है, वो इकट्ठे होकर कंट्रीज के बीच में और पूरे विश्व के बीच में किस तरह से प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन टू हीलिंग का एक जो है उसकी शुरुआत कर सकता है। सो मन जो है वो एक तरह से सेंटर पॉइंट हो जाता है इन सब बदलावों को लाने के लिए। तो मन की जो हीलिंग है, हीलिंग द माइंड एंड हीलिंग माइंड्स का मतलब है कि मन को उस लेवल पे सशक्त करना कि जहां पर वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन सबके लिए, दूसरी लाइफ फॉर्म्स के लिए, पृथ्वी के लिए, दूसरे लोगों के लिए, और एक सस्टेनेबल जिसको एनवायरनमेंट बोलते हैं उसके लिए सोच पाए। और हीलिंग माइंड की शुरुआत होती है ये समझने से कि हीलिंग का अर्थ क्या है। हीलिंग जो शब्द है वो आया है, एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है मेडिरी, जिससे कि मेडिटेशन भी बना है, मेडिकेशन भी बना है और होल भी बना है। तो होल जो है वो हीलिंग और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ, यानी अगर हमें अपनी पूरी हेल्थ को एक्सपीरियंस करना है तो उसके अंदर जो उसका हिंदी शब्द है स्वास्थ्य, जिसमें कि स्व में आस्था रखना, तो अगर हम हेल्दी बनना चाहते हैं, जिसका कि अगर हम छेद करें तो वर्ड आता है हील दाई, यानी अपने आप को हील कर पाना। जब हम अपने आप को हील कर पाएंगे तो जो हमसे जुड़े हैं उनको भी हील कर पाएंगे। तो हेल्थ और स्वास्थ्य दोनों का मतलब यही आता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से कंप्लीट सेंस ऑफ वेलबींग के रूप में अगर हील कर पाए तो हम हेल्थ को पा पाएंगे, और अगर हम हेल्थ को पा पाएंगे तो हम जो होल है यानी जो हमारे आसपास है और जो हमारी मैक्सिमम स्टेज है, जो हमारी परिपूर्ण स्थिति है, उसको भी हम पा पाएंगे। तो यहां पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हीलिंग शब्द को समझकर हम सारे इंडिविजुअली एक प्लान ऑफ एक्शन बना पाए अपने लिए और फिर एज अ ग्रुप, ताकि हम अपने आप को हील कर पाए और आसपास वालों को हील कर पाए। वहां पर मैं समझता हूं कि जो भी हीलिंग प्रोफेशन में है, और हीलिंग प्रोफेशन आज के समय में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, हर पैथी के लोग, वो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट लाइन हीलर्स जिनको कहा जाता है वो हैं, क्योंकि वो वाली चीजों के बारे में दिन रात सोचते भी हैं, उनकी पकड़ भी है कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, और उनकी बात को दूसरे लोग समाज के जो हैं वो भी सुनते हैं। और खास तौर पे अगर कोई व्यक्ति उस स्थिति में होता है जब उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो वो सबसे पहले उनके पास पहुंचता है। वहां पर आई वुड से एक बहुत पुरानी फ्रेज है, हीलर हील थाइसेल्फ, यानी वो व्यक्ति जो दूसरों को ठीक करता है, जो दूसरों को हील करता है, जो दूसरों को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है, उस व्यक्ति को पहले अपने आप को ठीक करने की जरूरत हो जाती है। कई कारण है, लेकिन पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि जब वो अपने साथ एक्सपेरिमेंट करता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद वो दूसरों के साथ जिनको वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है उनको वही सीख देना आसान हो जाता है। दूसरा, जब वो खुद एक एग्जाम्पल बनता है तो कई बार बिना कहे ही दूसरे लोग उसकी बात को समझ लेते हैं। तीसरा, जब हम खुद अपने आप को हील करते हैं तो हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं, और इसीलिए जो अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस, जो अलग अलग तरह के चैलेंजेस हेल्थ प्रोफेशनल्स के सामने आते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है कि हम हेल्थ प्रोफेशनल्स अपने आप को सजग रखकर, सशक्त रखकर और स्वस्थ रखकर अपना और समाज का भला करने में पूरी तरह से सक्षम हो। तो जब हीलर की बात आती है, वैसे तो हम में से हर कोई व्यक्ति हीलर है, क्योंकि एक तरह से अपने शरीर को हर समय हम हील कर ही रहे हैं। पूरे दिन में बॉडी में अगर देखें तो जो अलग अलग तरह के केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है, जिसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं, यानी समांतर रूप से अपने आप को सजग रखकर ठीक रहना। तो वो जो केमिकल्स हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या ब्लड के द्वारा जो अलग अलग चीजें, या लिम्फैटिक सिस्टम के द्वारा जो अलग अलग चीजें जाती हैं, और हम इतनी चीजों के होने के बावजूद, अलग अलग तरह की बीमारियों के अपने आसपास होने के बावजूद, प्रदूषण के होने के बावजूद, खाने में या एयर में कई तरह के इम्प्योरिटीज होने के बावजूद, या हमारे मन के अंदर जो कई तरह के स्ट्रेसेस और नेगेटिव भावनाएं चलती हैं, उनके बावजूद हम स्वस्थ रहते हैं, हम बहुत ज्यादा उतने बीमार नहीं होते, और ज्यादातर लोग बाय एंड लार्ज ठीक रहते हैं। जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, या हमारी अपने आप को स्वस्थ रखने की ताकत कम हो जाती है, तब हम बीमार होने शुरू होते हैं। और अगर वहां भी हम अपने आप को, अपने अंदर जो हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको समझकर और रेगुलरली जिस प्रकार से जरूरत है उस प्रकार से अपनी जांच करवाकर या डॉक्टर को दिखाकर अपने आप को चाहें तो हर समय बेस्ट ऑफ कंडीशंस में रख सकते हैं। और अगर हम अपने सोच जो है, अपने भावनाएं जो हैं, हमारे एक्शंस जो हैं, किस प्रकार से जब स्ट्रेसेस आते हैं तो हम उनके साथ डील कर पाते हैं, हमारी चीजों से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता कहते हैं फिजिकली एंड इमोशनली वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी वजह से हम आमतौर पे जो रोजमर्रा के जीवन के चैलेंजेस हैं हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए, उनको ठीक रख पाते हैं, अपने आप को हील कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि एक ग्रेट वंडर है, लेकिन जब वो थोड़ा सा परेशानी में आना शुरू होता है या किसी कारण से कोई महामारी फैलती है या अचानक सारे लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं या कई तरह की समाज में बदलाव आते हैं या बहुत तरह की नकारात्मक टेक्नोलॉजीज आती हैं या कई तरह के जो जिनको कि हम नेगेटिव या टॉक्सिक इंटरैक्शंस कहते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं, तो जब वो होते हैं तो फिर उनको संभालने के लिए हमारे पास शक्ति का भी होना जरूरी है, हर किसी के पास, लेकिन हीलर के पास खास तौर पर, क्योंकि हीलर जो है वो हर समय उसी माहौल में है। हीलर जो है उसके आसपास या तो बीमार लोग हैं या टेक्नोलॉजी है और सुबह से शाम तक उसको सिर्फ स्ट्रेसेस से या दूसरों की परेशानियों को ठीक करने में अपना समय बिताना पड़ता है, तो उसकी पावर्स जो हैं फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत होती है और वहां पे एक सशक्त मन की जरूरत हो जाती है। क्योंकि सशक्त मन का मतलब है कि हर समय अपने बारे में, अपनों के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में हमारा सजग रहना, हमारा क्या क्या चीज उसमें हो रही है जिसको ठीक करने की जरूरत है इसके बारे में ध्यान रखना, और फिर प्रोसेसेस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हो जिसके द्वारा हम उन चीजों के साथ डील कर सकें, इस चीज के बारे में एक प्लान ऑफ एक्शन होना। अनफॉर्चुनेटली किसी भी कॉलेज में ये तो नहीं बताया जाता कि हम अपने आप को स्वस्थ से और स्वस्थ कैसे रख सके, नॉर्मल से वेलबींग में कैसे जा सके, बीमारी हुई है तो उसको कैसे पहचान सके और उसको ठीक करने के मोस्टली फिजिकल लेवल पे क्या तरीके होते हैं उसके बारे में तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। आज के समय पे इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी से भरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन किस तरह से मैं अपने आप को स्व आस्था में रहकर हील कर सकूं और खास तौर पे अपने मन को सशक्त रख सकूं ताकि वो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ मेरे शरीर को ठीक रख सके लेकिन मेरे संबंधों को ठीक रख सके और जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं, जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, जिस रूप में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जो जो मैं विश्व को दे सकता हूं, मेरे द्वारा विश्व को क्या फायदा हो सकता है, उनके बारे में भी फोकस कर पाना, तो इस चीज के बारे में ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन। और इसीलिए आज के समय में जरूरी हो जाता है कि जब आने वाले समय में माइंड के बारे में ऑलरेडी बहुत बात हो रही है, मेंटल हेल्थ के बारे में और बहुत बात हो रही है, इमोशनल डिस्टरबेंस को ठीक कैसे रखना है इसके बारे में बहुत बात चल रही है, तो किस तरीके से हम इन सब चीजों को एक प्लान ऑफ एक्शन के द्वारा ठीक रख सके उनकी जरूरत हो जाती है। मन जो है वो अगेन एक बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस के रूप में चलता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी वंडरफुल तो है ही, लेकिन वंडरफुल होने के साथ साथ ही ये भी बहुत देखने में आया है कि वो अगर खुद ही हम बहुत परेशानी वाली स्थिति में नहीं रहते हैं तो अपने आप ही छोटे मोटे चीजों को वो ठीक रख सकती है। और वहां पर ये सबसे बड़ी चीज जरूरी हो जाती है कि हम समझ पाए कि हमारा मन जो है वो काम कैसे चलता है, क्योंकि माइंड जो है माइंड की पावर्स को और माइंड के प्रोसेसेस को समझना जब तक पॉसिबल नहीं है तब तक उसको ठीक करना भी पॉसिबल नहीं है। मन को चलाती है हमारी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एनर्जी सोल आत्मा कई रूप से इसको जाना जाता है, बट बेसिकली एक ऐसी पावरफुल और सजग एनर्जी जो कि हर तरह के प्रोसेस को समझकर ऑटोमेटिकली उसको चलाती है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम उसे देख तो सकते नहीं लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। हम कंप्यूटर में अगर कोई एक प्रोग्राम चला रहे हैं तो हम उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वो चल रहा है और उस प्रोसेस के द्वारा हम जो वर्ड्स देख रहे हैं या पिक्चर्स देख रहे हैं उसे तो महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि शरीर के अंदर अब तक कभी भी उसको फोटोग्राफ नहीं किया गया है या कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो हम ये नहीं भूलें कि आज से 30-40 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी और आज जो टेक्नोलॉजी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले एक जमाने में एक्सरे सिर्फ हुआ करते थे और आज के समय में हम पूरी बॉडी की रियल टाइम में फोटोग्राफ कर सकते हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर उनको देख सकते हैं। तो वो फिजिकल लेवल पे हम कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी लेवल पे है, एनर्जी लेवल को देखने के लिए जो टूल्स हैं वो भी एनर्जी के होंगे, क्योंकि उन टूल्स को हम किसी भी फिजिकल चीज को एनर्जी के द्वारा तो देख सकते हैं लेकिन एनर्जी को फिजिकल टूल्स से नापने के लिए हमें उन्हीं टूल्स की जरूरत होगी। तो यहां पे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें अपने मन को ठीक रखना है या मन की पावर्स को जानना है तो वहां पे हमें मन से जुड़े जो प्रोसेसेस हैं जो दिखते नहीं हैं, जो महसूस किए जा सकते हैं, जो 5 सेंसेस द्वारा फिजिकल जो सेंसेस हैं हमारी टेस्ट टच हियरिंग सीइंग स्मेलिंग उनके द्वारा नहीं महसूस हो सकते, लेकिन जो हमारी पावर ऑफ थिंकिंग है जो पावर ऑफ इमोशंस है उनके द्वारा हम उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो माइंड से भी पहले की एक स्टेज है और उस एनर्जी के द्वारा हमारी वृत्तियां पैदा होती हैं, यानी इंटेंशंस। तो जो इंटेंशंस हैं वो डिसाइड करती हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाते हैं और उसके द्वारा फिर थॉट्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज करना चाहते हैं तो किस रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे थॉट्स के होने की जरूरत होती है। और फिर उन थॉट्स में या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा इमोशन, या तो हम उसको सोचने के बाद महसूस करेंगे कि हाँ ऐसा करने से अच्छा होगा, इस डायरेक्शन में जाने से फायदा होगा, या इसको करने से मुझे खुशी मिलेगी शांति मिलेगी या संबंध अच्छे होंगे, तो हम उन चीजों को करते हैं और वो थॉट्स जो कि हमें लगता है कि हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी, रादर नेगेटिव होंगी, हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाएंगे या दूसरों को डिस्टर्ब कर देंगे या हमें सुख की बजाय दुख मिलेगा शांति की बजाय अशांति मिलेगी, तो हम उन चीजों को नहीं करते। तो जब एक इमोशन आती है तो वो डिसाइड करती है कि अब मैं एक्शन करूं या ना करूं और करूं तो किस तरह का करूं। और जब वो एक्शन हम करते हैं और एक्शन को करने के बाद या हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है, अंदर से खुशी होती है, अंदर से सुकून मिलता है, या बाहरी रूप से दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ आपने जो किया उससे बहुत फायदा हुआ या उसका फायदा हमको खुद बाहरी दुनिया में दिखता है, तो फिर वो एक एक्शन जो है एक पॉजिटिव मेमोरी के रूप में बन जाता है। उसी तरह से हमारी नेगेटिव मेमोरीज भी होती है, पुरानी मेमोरीज जो कई बार तो उसी समय एक्शन करते ही हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या हमने ये किया तो सही लेकिन इमोशन उसके बाद हमारी अच्छी नहीं थी, और फिर वो मेमोरी है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी इसकी वजह से स्थिति जो थी वो थोड़ी डावाडोल हुई, या मेरे एक्शन से मुझे या दूसरों को नुकसान हुआ। तो इसी तरह की कई पुरानी मेमोरीज उन एक्शंस की, उन इमोशंस की, उन थॉट्स की, उन इंटेंशंस की हमारे पूरे माइंड के ऊपर स्क्रिप्टेड है, और वो जो पैटर्न है जो माइंड के ऊपर स्क्रिप्टेड हैं पुराने, वो गाइड करते हैं अब कि मैं किस डायरेक्शन में जाता हूं, और जब मैं उस डायरेक्शन में जाना शुरू करता हूं और लगातार जाना शुरू करता हूं और वो पॉजिटिव चॉइसेस हैं मेरे अपने लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे शरीर की और मन की स्टेबिलिटी के लिए, होमोस्टेसिस के लिए, तो फिर वो धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू होते हैं। और उसी के साथ साथ जब हम आसपास वालों से इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे संबंध होते हैं, उन संबंधों में मिठास आती है, उन संबंधों में सकारात्मक आती है, कोऑपरेशन होती है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स लाइक जेलसी या एक्सेसिव कंपटीशन या दूसरों से घृणा वो नहीं होती है, तो फिर हमारे संबंध मधुर होने शुरू हो जाते हैं, हमें उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, और फिर इकट्ठे मिलकर एक सकारात्मक रूप से जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे घर में हैं तो वहां पे हम जो वहां पे संबंध है उनकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल जो है वो क्रिएट करते हैं। एंड इंसिडेंटली आज के समय में शोध बताती है कि जब भी हम एक उस माहौल में रहते हैं जहां पे कि लोग बहुत पॉजिटिव हैं, लोग आपको अच्छी फीडबैक देते हैं, लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं और उनके साथ आपके मतभेद नहीं होते हैं, तो सिर्फ काम ही अच्छे नहीं होते, सिर्फ मन ही अच्छा नहीं होता, लेकिन शरीर पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। बहुत सारी स्टडीज अब निकल के आ रही हैं कि जो तनावपूर्ण माहौल है या तनावपूर्ण जो रिश्ते हैं उनकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर जो नेगेटिव असर होता है उसकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी शुगर लेवल्स बढ़ती हैं, जो कई तरह के नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स कह लीजिए, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कि हमको खुशी देते हैं, वो जो हैं वो बढ़ते हैं, और जो हमारी सारे शरीर की प्रक्रिया है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, प्रतिरोध क्षमता है, रेजिलियंस है, वो भी बेटर होनी शुरू हो जाती है। तो एक पॉजिटिव माहौल में रहने का भी हमें फायदा होता है, बोथ एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल, ऑफ कोर्स सोशल लेवल पे तो उसका फायदा होता ही है। और जब हम वो स्थिति को पानी शुरू करते हैं या उस स्थिति में रहना ज्यादातर शुरू करते हैं जिसमें कि हमको अच्छा लगता है, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द माइंड लेकिन सोल लेवल पर, कॉन्शियसनेस लेवल पर, और उसकी वजह से हम हमेशा अपने आप को लाइट, हैप्पी, हील्ड महसूस करते हैं, हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं, अपने पावर्स को महसूस करते हैं, हम छोटी मोटी चीजों से जल्दी परेशान नहीं हो जाते हैं। तो जब वो प्रोसेसेस होने शुरू होते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारी हेल्थ है वो बेटर होनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेसेस ऑफ हीलिंग जो हैं, चाहे कि मन के द्वारा शरीर पर, मन के द्वारा मन पर, मन के द्वारा समाज पर और मन के द्वारा हमारी आध्यात्मिक स्थिति पर, उनकी शुरुआत मन से होती है। सो मन को सशक्त रखने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी हो जाती हैं, जो कि हम रोज कर सकते हैं। मन को ठीक रहने के लिए शरीर का ठीक होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर कोई ऐसी फिजिकल इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस है, डिसेबिलिटीज हैं जिसको कि हम ठीक कर सकते हैं। और ज्यादातर इलनेसेस जो हैं उनमें बिहेवियर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारा वेट बढ़ा हुआ है और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या हमारा खान पान गलत है, या हमारी कैलोरीज जो हैं वो इस तरह की हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, या जो खाने का समय है वो ठीक नहीं है, तो उन सब का भी हमारे मन पे असर पड़ता है, हम बोझिल महसूस करते हैं। तो बिहेवियर वहां पर सही क्या है और सही डाइट क्या है और उसको किस तरीके से मुझे रोज लेना है, किस समय पर मुझे रोज लेना है, वेट को कैसे मेंटेन करना है, साथ में क्या एक्सरसाइज किस समय पर कितनी करनी है, और इन दोनों का जो तालमेल है उसको कैसे ठीक रखना है, ये भी मन द्वारा डिसाइड होता है। तो मन अगर आपका हील्ड है, सशक्त है, तो जो शारीरिक प्रोसेसेस ठीक चलने चाहिए, खासतौर पे इसका कनेक्शन नींद के साथ बहुत ज्यादा है। अगर हम सशक्त हैं मन से तो हमारी नींद अच्छी होगी, हमारी रेस्टफुल स्लीप होगी, हम सुबह उठेंगे तो हम एक सकारात्मक रूप से उठेंगे अगले दिन को पूरी तरीके से फेस करने के लिए। और उस समय जो शरीर में कई बार उन लोगों को आजकल देखा गया है कि जिनका सोने का समय सही नहीं है, बहुत लेट सोते हैं या बहुत लेट उठते हैं और पूरी तरह से नहीं सो पाते, या बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, डिस्टर्ब्ड कारणों से उनकी स्लीप जो है, मन में जो उनके चल रहा है उसकी वजह से होती है, तो उसका भी शरीर पे पूरा असर पड़ता। आज के समय में देखा गया है कि जो करीबन 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है जिसको किसी ना किसी तरीके की स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और स्ट्रेस जो है, हमारा मन अगर गड़बड़ाया हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है हमें पूरी तरह से सशक्त नींद के ना आने का। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ फिर ये कि कुछ एडिक्शंस अगर हैं, वहां पे तो मेन जो है वो बात ही मन की आ जाती है, क्योंकि एडिक्शन शुरू करने, एडिक्शन को चलाने, और एडिक्शन हो, अब्यूज हो, यूज हो, शुरुआत तो ऑफकोर्स यूज से ही होती है और वो धीरे धीरे फिर अब्यूज बन जाती है, और फिर जब व्यक्ति किसी कारण से उसके बिना जी नहीं पाता, उसे लगता है कि वो उसके बिना जी नहीं पाएगा, हालांकि ये सच नहीं है, किसी भी एडिक्शन को छोड़ा जा सकता है खुद या डॉक्टरी सलाह से। तो जब हम एडिक्शन में नहीं फंसते तो हमारा मन जो है, और ये छोटी पॉपुलेशन नहीं है, ये करीबन 1/3 लोग हैं जो कि अलग अलग तरह की एडिक्शन, चाहे वो टबैको की हो, अल्कोहल की हो, कैनबिस यानी कि चरस गांजा उसकी हो, या ड्रग्स की हो, या कई बार स्लीपिंग पिल्स की हो, या पेन किलर्स की जो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कई बार लोग लेते हैं उसकी हो, तो वो जो एडिक्शंस हैं वो भी हमारे मन को भोजन करते हैं, और उसकी वजह से जो उसकी हीलिंग पावर्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर कोई शारीरिक बीमारी है जिसके लिए डॉक्टरी सलाह की जरूरत है तो वो भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में रहेगी तो हमारे शरीर के जो प्रोसेस को, बीइंग विद पीपल जो कि इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, सत्संग कह लीजिए और मेडिटेशन को जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो एक दिन आता है जब वो छलकना शुरू हो जाता है, और उस छलकने से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी सोल को, बल्कि आसपास वाले लोगों को भी फायदा होने लगता है, एंड देन ट्रूली इट बिकम्स द हीलिंग माइंड, हीलिंग माइंड फॉर माई सेल्फ, हीलिंग माइंड फॉर द वर्ल्ड अराउंड मी। क्योंकि आने वाले समय में जहां पे कि कई तरह के परेशानियां या स्ट्रेसेस दूसरे लोग, समाज या पूरा विश्व फेस करता है, वहां पे वो लोग जो कि अपने मन को सशक्त बनाकर उस क्राइसिस की सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंस के साथ एक नए रूप में हीलिंग को पैदा कर सकते हैं, उन हीलिंग माइंड्स को आज और आने वाले समय को पूरी जरूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का, जिन्होंने इतने सुंदर विचार हम सबके साथ शेयर किए। अपने मन को हील कैसे किया जा सकता है, इसके आयाम क्या हैं, उन सभी से हम अभी परिचित हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं ये भी आशा करता हूं कि हम सभी अपना बेहतर ख्याल रखेंगे, अपने मन का भी हम बेहतर ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवधेश जी का उस मार्गदर्शन के लिए। आइए चलते हैं एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस की तरफ। राजयोग मेडिटेशन को हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये मेडिटेशन करके भी देखना चाहिए। राजयोग मेडिटेशन के बारे में सुनने और एक्सपीरियंस करवाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रीना तोमर जी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के। अब मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें कि हम सबको राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताएं और मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराएं। डॉक्टर रीना तोमर।
कंपैशन एक शक्ति है, एक गुण है, जिसके बारे में अब तक हम सबने बहुत सुना, कुछ हद तक समझा भी, परंतु कभी अनुभव नहीं किया। हम सभी कंपैशन का अनुभव करना चाहते हैं और सभी मानते भी हैं कि कंपैशन हम सब का एक निजी संस्कार है, हम सब की एक ओरिजिनल कोर पर्सनालिटी का हिस्सा है। वी ऑल आर बॉर्न कंपैशनेट बीइंग्स, परंतु इसको अपनी डेली लाइफ में हम अनुभव नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे ही व्यक्तित्व के कुछ काले बादल आ जाते हैं जो कंपैशन के इस अनुभव को रोक देते हैं, चाहे वो क्रोध के काले बादल हों या फिर टेंशन के काले बादल हों या फिर किसी के प्रति जेलसी का काला बादल हो, जो हमारे इस कंपैशन के सुंदर अनुभव में विघ्न डालते हैं। तो आइए चलते हैं, कंपैशन की सुंदर भावना को एक्सपीरियंस करते हैं। कंपैशन मतलब बीइंग मर्सीफुल इन एक्शन, बीइंग काइंडनेस इन एक्शन, रहम की भावना, किसी को एम्पैथाइज करने की भावना, किसी को समझना, परंतु ये सब मेरे कर्म में दिखाई दे। हम खुद के लिए भी कंपैशनेट अनुभव कर सकते हैं और औरों के लिए भी कंपैशनेट हो सकते हैं। इसका पहला स्टेप है कि हम दूसरों को समझ सकें। वो जैसे भी हैं, जिस भी पर्सनालिटी के हैं, जिस भी रोल में हैं, उनको हम उसी रोल में एक्सेप्ट करें और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सबके लिए लेकर आए। हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, इस नाते दिल से हम सभी को अपना मान सकते हैं, तो फिर कंपैशन की भावना नेचुरली ही हमारे मन और बुद्धि में जनरेट होगी। जितना हम सबके लिए अनकंडीशनल स्नेह को अनुभव कर सकें, उतना हम कंपैशनेट होंगे। हम जितने अच्छे से सबकी बातों को सुन सकें, दिल से सभी की बातों को सुने, अपने आप को पूरा ऑफर करके सबकी बातों को सुने, एक कंपैशनेट लिसनर बने, तब हम इस सुंदर एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। कंपैशनेट का पहला स्टेप है खुद को चार्ज करना और खुद को रीस्टॉक करना। तो आइए चलते हैं, कंपैशन की इस भावना को अनुभव करें। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस, ध्यान धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर की तरह अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। ये ब्रीदिंग एक बहुत ही सुंदर ब्रिज है मेरे बॉडी और मुझ माइंड के बीच। अब मेरे मन में जिस तरह के विचार चल रहे हैं उनको साक्षी होकर देखते रहेंगे। मैं एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर की तरह, एक डिटैच्ड कंपैशनेट ऑब्जर्वर की तरह अपने विचारों को देख रही हूं। जो भी विचार मेरे मन में आते हैं उन सभी विचारों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। हर विचार को आने दीजिए और उनको एक्सेप्ट करते हुए, समझते हुए हर विचार को जाने भी दीजिए। अब अपना पूरा फोकस अंदर की ओर लेकर चले। आज मैं अपने अंदर की यात्रा करती हूं और पहुंच जाए अपने उस इनर काम के स्थान में जहां असीम शांति है, जहां बहुत कामनेस है। ये मेरे मन का कॉर्नर, मेरा रिलैक्सिंग स्पेस है। दिस स्पेस ऑफ इनर काम इज सो सेरेन एंड सो ब्यूटिफुल। मेरे इस मन के कॉर्नर पर मैं बहुत जेनरस हूं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत पेशेंट हो और एक बहुत अच्छी लिसनर हो। ये है वो मेरा मन का कॉर्नर जहां मैं एक कंपैशनेट बीइंग हूं, जहां मेरे मन में सभी के लिए रहम की भावना है, फॉरगिवनेस की भावना है, एक कंप्लीट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। दिस इज रियल मी। ये मेरा निजी संस्कार है। मेरे मन में संसार के सभी आत्माओं के लिए असीम रहम की भावना है। जो जैसे हैं, आज मैं उन सबको ऐसे ही दिल से एक्सेप्ट करती हूं जैसे परमात्मा ने मुझे एक्सेप्ट किया। ऐसे ही परमात्मा की सभी संतान हैं और मैं उनको दिल से एक्सेप्ट करती हूं। आज वो सुनहरा मौका है जब मेरे मन में हर आत्मा के लिए फॉरगिवनेस है। आज मैं दिल से हर व्यक्ति को, हर रिश्ते को और हर आत्मा को माफ करती हूं। और अगर अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं उनसे माफी मांगती हूं। अब और आगे बढ़ें और अपने आप को ले जाएं उस इनफाइनाइट पीस की तरफ जहां असीम शांति है, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा है। मेरे पिता, हम सबके पिता, जो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कंपैशनेट हैं, हम उनके बच्चे, उनसे सीख लेते हैं, कभी छोटी गलती भी करते हैं, परंतु हमारे पिता हमेशा हमें माफ करते हुए दोनों बाहें खोलकर हमें एक्सेप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा की तरह एक बेहद के भाव से बड़ा दिल रखते हुए रहम की भावना मेरे अंदर भी है। I am cultivating this experience of compassion within me and for everyone around me. I am a compassionate being. अब वापस से अपनी जर्नी करें और इसी जागृत अवस्था में आ जाएं। फिर से अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर लेकर जाएं और मैं देख रही हूं कि मेरे विचार कितने शांत और कितने स्लो हैं, मेरे इमोशंस, मेरी स्टेट ऑफ माइंड कितनी हल्की है, जिसमें हर आत्मा के लिए एक्सेप्टेंस है। मेरे मन में हर एक व्यक्ति के लिए अनकंडीशनल प्यार है। यह रूहानी प्रेम जो परमात्मा हम सबसे करते हैं, उतना ही रूहानी प्रेम मेरे अंदर हर आत्मा के लिए है। खुली आंखों से, अपनी जागृत अवस्था से अपने विचारों को देखते रहिए और अब अपना फोकस अपने शरीर पर लेकर आइए। फिर से दो बार गहरी लंबी सांस। और अब इसी जागृत अवस्था में अपने शरीर के कॉन्शियसनेस में फिर से सुंदर विचार को लेकर आए, जो कि एक सच है। I am a compassionate being. I am always a compassionate being. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रीना तोमर जी का, हम सबको राजयोग मेडिटेशन से रूबरू करवाया और हम सबको ये एक्सपीरियंस करवाया कि राजयोग मेडिटेशन कैसे किया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। पुनः एक और बार डॉक्टर रीना तोमर जी का धन्यवाद। दोस्तों, माइंड बॉडी मेडिसिन के कॉन्फ्रेंस के इस इवनिंग सेशन में आप सभी हीलिंग के अच्छे विचार सुन रहे हैं। हीलिंग माइंड्स के बारे में आपने सुना। अब हम अपने संबंधों की ओर देखें तो कभी कभार लगता है कि हमारे संबंधों को भी हील करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली कहा जाता है कि हम एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। कभी हम अपने पार्टनर्स को हर्ट कर देते हैं, अपने बच्चों को या अपने माता पिता को, फ्रेंड्स को। हर्ट होना स्वाभाविक सा लगता है जब हम हर्ट करते हैं, और बहुत ही नेचुरली करते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हील करना भी इतना ही नेचुरल होना चाहिए। हीलिंग रिलेशनशिप्स, ये हमारे अगले सत्र का विषय है। और इस सत्र पर प्रकाश डालने के लिए और अपने प्रभावशाली वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करने के लिए एक ऐसी हस्ती है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी ब्रह्मा कुमारीज के टेलीविजन फेस के रूप में जानी जाती हैं। उनके वक्तव्यों और उनके टेलीविजन पर चलाए जाने वाले हजारों कार्यक्रमों से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया है। उनके इन्हीं योगदानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। आइए हम सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी से हीलिंग रिलेशनशिप्स के बारे में।
ओम शांति।
हम सबके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते, हमारे रिश्ते फैमिली के साथ, हमारे रिश्ते फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिश्ते अपने काम की जगह पर अपने कलीग्स के साथ। रिलेशनशिप इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जहां हम जो सोचते हैं, फील करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो वाइब्रेशन है जो क्रिएट करते हैं और वो वाइब्रेशन रेडिएट हो जाती है। सामने वाला जो सोचता है, फील करता है, बिहेव करता है, वो उनकी वाइब्रेशन है जो वो क्रिएट करते हैं और हमारे तक वो पहुंचती है। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, इसको हम एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता कहते हैं। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो एक लेबल के थ्रू होता है। हम कहते हैं ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, अ फ्रेंड एंड फ्रेंड रिलेशनशिप, अ नेबर एंड अ नेबर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये लेबल नहीं है, ये है एक एनर्जी एक्सचेंज किसके बीच। इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू सोल्स, दो आत्माओं के बीच जो वाइब्रेशन एक्सचेंज होती है वो एक रिलेशनशिप है। फिर वो दो आत्माएं, वो दो सोल्स अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक पेरेंट एक चाइल्ड, एक हस्बैंड एक वाइफ, ये अलग अलग लेबल्स हैं। लेकिन हरेक में रिश्ता तो सेम ही है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द टू सोल्स। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि रिश्ता क्या है। माय थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, बिहेवियर, मेरी तरफ से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है और सामने वाले तक पहुंचती है, वो मेरा रिश्ता बनाती है। ज्यादातर हम सोचते हैं कि रिश्ते वो हैं जो बाहर दिखता है, मतलब हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। यू नो, कितनी बार हम अपने आप को ये कहते हुए सुनते हैं या दूसरे ये कह रहे होते हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर दिस रिलेशनशिप। तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन दिस रिलेशनशिप। तो सामने वाला कहेगा, मैंने इस रिश्ते के लिए ये किया, ये किया, ये किया, मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इनके लिए किया, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इनके बारे में सोचा, मैंने सारा जीवन किया तो क्या किया, सिर्फ इनके लिए ही किया। सो वी फोकस ऑन द डूइंग, कि हमने एक दूसरे के लिए क्या किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने रिश्तों में एक दूसरे के लिए क्या किया, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने एक दूसरे के लिए कैसा सोचा, हाउ आर यू थिंकिंग फॉर द अदर पर्सन। सो रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द अदर पर्सन, रिलेशनशिप इज अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम पकड़ ले कि रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो हम उनके लिए कर रहे हैं, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ की तरफ हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी, समाज भी किस पे फोकस कर रहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए क्या किया, हम उनके घर गए थे, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। सो एज अ सोसाइटी, एक समाज, हम किया 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 इस पर फोकस करते हैं, विच मीन्स हम उस पर फोकस करते हैं जो दिखता है, जो दिखता है कि सबने क्या क्या किया, चाहे परिवार के लिए, चाहे दोस्तों के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, चाहे कोई फंक्शन में, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, हरेक ने क्या किया किया। रिश्ते अगर सिर्फ किया से बनते, विच मीन्स हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं उससे बनते, तो आपको नहीं लगता आज हमारे रिश्ते कितने ना स्ट्रांग होते, कितने स्ट्रांग होते। क्योंकि हम सारा दिन कर ही क्या कर रहे हैं, रिश्तों के लिए तो कर रहे हैं, और इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी पूरी जीवन उस रिश्ते में लगा देने के बाद, हम ये फील करते हैं कि ये रिश्ता उतना स्ट्रांग क्यों नहीं है, ये छोटी सी बात से हिलता क्यों रहता है,
ये छोटी छोटी बातों में नाराज क्यों जाते हैं, इतना मैंने इनके लिए किया, वो इनको याद नहीं रहता, ये छोटी सी बात पकड़ कर बैठे हैं कि कल तुमने ऐसा नहीं किया। सो द किया वर्ड पे इतना ज्यादा फोकस है कि हमें लगता है इतना करने के बाद भी आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत किया है। तो इसलिए थोड़ा सा आज एक और शिफ्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप मीन्स एनर्जी एक्सचेंज। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी को सामने रखते हैं कि मेरा उनके साथ रिश्ता यहां नहीं होता है। हम कहते हैं मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, तो हमने सोचा रिलेशनशिप इज हियर इन व्हाट वी डू फॉर ईच अदर। रिलेशनशिप इज फर्स्ट हियर हियर। थोड़ा सा मन को रिवाइंड करें और किसी भी एक रिश्ते को ढूंढें जिसमें आपको लगता है कि वो जो हार्मनी, वो जो स्मूथनेस, वो जो ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो करनी चाहिए हम दो लोगों के बीच, वो हो नहीं रही है। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर कोई बात, फिर कोई नाराजगी, फिर कोई हर्ट। एक्सपेक्टेशंस तो वैसे ही नहीं खत्म हो रही। तो ये क्या है और इसको कहाँ चेक करना है? तो उस रिश्ते में जाकर उस व्यक्ति के लिए यहां पर आइए, यहां नहीं देखिए, ये नहीं देखिएगा कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, यहां आइए और सबसे पहली चीज फोकस कीजिए कि उनके लिए वो सब करते हुए हमारी मन की स्थिति कैसी थी। इवन लेट्स टेक अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, एक पेरेंट और चाइल्ड, निस्वार्थ भाव, सेल्फलेस गिविंग। एक पेरेंट को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है, एक पेरेंट सिर्फ देता और देता है। तो ये एक बहुत ब्यूटिफुल सेल्फलेस रिलेशनशिप है। लेकिन लेकिन जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी आपसे पूछे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा रेस्ट करो ना, इतना भागते रहते हो सारा दिन, कहेंगे परिवार के लिए, अपने घर के लिए। और फिर भी वहां बच्चे नाराज हो जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टाइम नहीं स्पेंड करते हमारे साथ, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और छोटी छोटी बातों पर इतनी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हर्ट हो जाते हैं। तो फिर हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने इतना किया, ये अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं है। पीपल डोंट सीम टू बी कंटेंटेड विद अस, संतुष्टता नहीं दिखाई दे रही सामने। मैं क्या करूं और इनके लिए जिससे ये संतुष्ट हो जाए? और कभी कभी हम उनको कह भी देते हैं, अब मैं आपके लिए और क्या करूं by which you will be happy, आप तो खुशी नहीं होते इतना सब करने के बाद भी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है रिश्ते के ऊपर कि इतना करने के बाद भी खुश नहीं हो रहे हैं। सो अब इस रिश्ते को देखते हैं, हमने किया, कहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। उनको बेस्ट मकान दिया, उनको बेस्ट स्कूल दिया, उनको बेस्ट ऑफ एवरी फैसिलिटी दी, अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता से ज्यादा दी। वी स्ट्रेच्ड आवर कैपेसिटी, कैपेसिटी अगर इतनी थी तो हम यहां गए, अपने आप पर स्पेंड नहीं किया, उन पर किया, बहुत कुछ किया। अब ये सब कुछ करते हुए हमारी मन की स्थिति कैसी थी ये चेक करना है। उनके प्रति भावना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, लेकिन अपने मन की स्थिति वो कैसी थी? क्योंकि उस रिश्ते में जो रेडिएट हो रहा था, जो एनर्जी हमारे से निकलकर उन तक जा रही थी, वो सिर्फ डूइंग की एनर्जी नहीं थी, वो हमने जो किया सिर्फ उसकी एनर्जी नहीं थी। हम यहां कैसे थे, फिर हम यहां कैसे थे, फिर हम यहां कैसे थे, ये तीन एनर्जीज फ्लो करती हैं। हम कोई भी एनर्जी को स्टॉप नहीं कर सकते कि मैं जो सोच रहा हूं वो किसी को पता न चले, बस जो मैं अच्छे से बात कर रहा हूं और जो मैं अच्छे से सब कुछ कर रहा हूं वो ही सबको दिखना चाहिए, ऐसे तो हो नहीं सकता। एनर्जी को तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, एनर्जी तो हमारे साथ फ्लो कर रही है। अब जब हमने इतना किया, क्या हम खुश थे करते हुए? क्या हम संतुष्ट थे करते हुए? क्या हम शांत थे करते हुए? क्या हम स्थिर थे करते हुए? मतलब क्या हम इमोशनली स्ट्रांग थे यहाँ पर मेहनत करते हुए, क्या हम राइट वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे थे यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट करते हुए, क्योंकि हम सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं हर जगह, घर पर भी, वर्क प्लेस पे भी, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कई लोग कहते भी है आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। बहुत ब्यूटीफुल आदत है, परफेक्ट तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले परफेक्ट कहाँ होना होगा, यहाँ परफेक्ट वाइब्रेशंस। पिछले कुछ सालों से हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे रिश्ते थोड़े से फ्रजाइल हो गए, छोटी सी बात पर हिलने लग जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो रिश्ते निभाने वाला है वो है ये आत्मा, आत्मा द माइंड विच क्रिएट्स द थॉट्स। तो कुछ समय से हम बाहर मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ की मेहनत करना इसको छोड़ दिया है, और मेहनत करना मतलब यहाँ का ध्यान रखना छोड़ दिया है, बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन द डूइंग कि वी फॉरगॉट द बीइंग। हमने सोचा यहाँ क्या करना है, सब कुछ तो यहाँ करना है क्योंकि ये दिखाई देता है, इसी से प्राप्ति होती है, इसी से सबके जीवन कंफर्टेबल होती है, तो हम यहाँ मेहनत करते रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिश्ते में एनर्जी सिर्फ यहाँ की नहीं जा रही थी, रिश्ते में एनर्जी यहाँ की भी जा रही थी। अब अपने मन की स्थिति को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर तनाव है, टेंशन है, आज किसी को पूछो आपको कभी टेंशन होती है तो कहते हो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब यहाँ अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंता है, वरी है, डर है किसी बात का, यहाँ अगर कंपैरिजन है, कंपटीशन है, हर्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये सारी एनर्जी यहाँ है, क्रिटिसिज्म है, कंप्लेनिंग है, ये एनर्जी यहाँ है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी अपनी एनर्जी है, वो हमारी अपनी सोच है, वो हमारे अपने परसेप्शंस है, हमारा नजरिया है, वो हमारा एटीट्यूड है। हम रिलेशनशिप में बहुत परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैल है, यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, यहाँ पर थोड़ा सा बोझ है, यहाँ पर परफेक्ट है लेकिन यहाँ थोड़ा सा इम्परफेक्ट है। अब अपनी इस इम्परफेक्शन के साथ हम इतने सारे रिश्तों में आ रहे हैं, घर पे, समाज में, एंड ऑफ कोर्स हमारी वर्क प्लेस में, एंड इन एवरी इंटरेक्शन हमारे से क्या रेडिएट कर रहा है, यहाँ सब कुछ परफेक्ट लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इम्परफेक्ट। यहाँ पे हर चीज समय पर पूरी हो रही है, परफेक्ट तरह से पूरी हो रही है, जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर थकावट है, निंदा है, टेंशन है, वरी है, मतलब एक लो वाइब्रेशन है। तो परफेक्ट डूइंग लेकिन नॉट वेरी परफेक्ट बीइंग एनर्जी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब ये एनर्जी सामने वाले तक पहुंची तो उनको भी परफेक्ट डूइंग मिला, क्योंकि हमने परफेक्ट डूइंग दिया था तो उनको भी परफेक्ट डूइंग मिला। तो आज अगर हम देखें हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें कितनी परफेक्ट हो गई हैं, हम सब कुछ समय से पहले अचीव कर लेते हैं, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए हम सब कुछ क्रॉस कर लेते हैं। घर देखें तो सब कुछ पा लिया, कहां एक समय था कि पूरा जीवन लग जाता था घर की एक एक चीज इकट्ठी करने में, आज तो सब कुछ है, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा है, जितना चाहिए नहीं था उससे भी ज्यादा है, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट आउटसाइड। तो उनको भी सब कुछ परफेक्ट मिला है, लेकिन साथ साथ वाइब्रेशंस कौन सी क्रिएट हुई है, द नॉट वेरी परफेक्ट वाइब्रेशन। अब आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, अपने किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और आप सिर्फ एक बार साक्षी होकर, डिटैच होकर उस रिश्ते को ऐसे सामने देखिए, द सोल इन दैट बॉडी इन दिस रिलेशनशिप विद मी। अब मैंने इनके लिए किया किया किया, लेट से मैंने 20 साल से इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो सब कुछ करते हुए मेरी टेंशन, मेरी चिंता, मेरा इरिटेशन, मेरी इम्पेशेंस, मेरी क्रिटिसिज्म की आदत, ये सारी वाइब्रेशंस भी मेरे से उनकी तरफ गई, 24/7 गई, सारा दिन गई। और ये वाइब्रेशंस जब उन तक गई तो उस आत्मा को भी वो वाली एनर्जी मिली। तो मेरे इस रिश्ते में, मेरे इस इंटरेक्शन में मेरा डूइंग परफेक्ट था, लेकिन मेरी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी नहीं थी। सामने वाला भी जो कर रहे हैं उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मन की स्थिति है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आजकल किसी को बोलो थोड़ा सा अपने मन का ध्यान रख लो तो कहते टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। तो बिजी वाली एनर्जी भी तो यही है ना, तो वो सारी एनर्जी उनके पास भी, वो सारी एनर्जी मेरे पास भी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को वो अच्छे वाली एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। रिश्ता करने पर स्थिर नहीं होता है, रिश्ता जो हम सोच और फील कर रहे हैं उस पर बेस्ड होता है, वो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आत्मा को एक बैटरी की तरह देखते हैं, जितनी ये बैटरी, ये सोल पावर अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी, अब नेगेटिव का भी तो मीनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातों को आज हम नॉर्मल कह देते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए नेगेटिव है, अनकंफर्टेबल है। तो जब हम वो अनकंफर्टेबल इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, हर रोज क्रिएट कर रहे हैं, कई सालों से क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ की ये जो बैटरी है ना, ये थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है, विच मीन्स अ लो बैटरी। अब सामने वाला जो है वो भी शायद अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो भी थोड़ी सी लो बैटरी। अब ये दो लो बैटरी है, जस्ट विजुअलाइज, एक हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, एक पेरेंट और चाइल्ड हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन दो लो बैटरी। अब ये दो लो बैटरी जब एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि इनकी बैटरी लो है, इनके पास रिश्ते में देने की क्षमता कम है। देना मतलब यहां से, व्हाट इज रिलेशनशिप, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ये वाइब्रेशंस हमसे रेडिएट हो, ये वाइब्रेशंस रेडिएट हो मुझसे सामने वाले तक। सामने वाला अपनी कैपेसिटी अनुसार करेगा, लेकिन मुझे अपनी कैपेसिटी को चेक करना है कि मेरे द्वारा यहां पर हर थॉट और फीलिंग में लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट ये मेरे से रेडिएट हो। लेकिन उसके लिए मेरी ये बैटरी कैसी होनी पड़ेगी, क्योंकि किसी और को वो रेडिएट करने के लिए यहाँ पर वो हमेशा होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हमेशा हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ये बैटरी चार्ज्ड होनी चाहिए। जब ये बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज्ड होती है, तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस, हर्ट, डिजायर्स, नाराजगी, उदासी, ये सब आने लगता है। और जब ये यहां आने लगता है तो ये वहां भी पहुंचता है, और जब ये वहां भी पहुंचता है तो वो उनके अंदर भी आने लगता है, और जब वो उनके माइंड पर भी आने लगता है तो वो हमारे पास भी पहुंचता है। एंड वेरी सून देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वॉन्टिंग, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आप मुझे समझो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, आप मेरे साथ एडजस्ट करो, ये वांटिंग की वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचनी शुरू हो जाती है। और हम कहते भी हैं एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरल है ना, रिश्ते में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसा होता है। तो ये जब होने लगता है तब हमारे रिश्ते की फाउंडेशन हिलने लगती है। हिलने क्यों लगती है, क्योंकि हम दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, हम दूसरे को कहते भी हैं व्हाट डिड आई गेट फ्रॉम यू इन दिस रिलेशनशिप, मुझे आपसे इस रिश्ते में मिला क्या है, क्योंकि हम मिला पे फोकस कर रहे हैं। रिश्ता लेने के लिए नहीं था, रिश्ता देने के लिए होता है, इट्स अबाउट गिविंग। हम अक्सर कहते भी है ना, रिलेशनशिप इज अबाउट गिव एंड टेक, रिश्ता लेन देन होता है। रिलेशनशिप गिव एंड टेक कैसे हो सकता है? बिजनेस गिव एंड टेक होता है, और बिजनेस हमें बहुत अच्छे से गिव एंड टेक करना चाहिए कि हमने कितना गिव किया, हमें उसके रिटर्न में कितना मिला, एक्यूरेटली कैलकुलेट करके करना चाहिए। लेकिन अगर हमने वही आदत रिश्तों में डाल दी कि हमने उनके लिए क्या किया, हमने उनके लिए क्या सोचा, हमने उनके साथ कैसे एडजस्ट किया, उन्होंने मेरे लिए कितना किया, तो फिर तो वो रिश्ते में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा, क्योंकि कभी भी रिश्ते में वो लेन देन बराबर की नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी, हर एक के संस्कार, हर एक की क्षमता, हर एक की आदतें, हर एक के नजरिए बिल्कुल अलग होते हैं। हम डूइंग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बीइंग में कैलकुलेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन यहां से चेंज करते हैं, रिलेशनशिप इज अबाउट गिव एंड टेक। क्योंकि क्या हुआ, वो गिव एंड टेक सोचते 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 हम ज्यादा टेक पर ही फोकस्ड हो गए। What did I get in this relationship? What did this person do for me? इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया, फोकस करना था। हमने क्या गिव किया और अपने गिव को और बढ़ाते जाना है। जितना हम अपने गिव को और बढ़ाते जाएंगे, हमारे रिश्तों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो रिलेशनशिप इज हियर एंड रिलेशनशिप इज अबाउट गिविंग। तो एक आदत आज यहाँ से खत्म करते हैं, सोचने की आदत है वो कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने मेरे लिए कैसा सोचा, उन्होंने मुझसे कैसे बात की, उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मेरे बारे में सबको क्या कहा। ये सारा दिन ऐसे है, बी नाइस टू मी, मुझसे अच्छे से बात करे, मेरे से अच्छे से व्यवहार करे, मेरे लिए एडजस्ट करे, मेरे लिए सैक्रिफाइस करे, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, ये ऐसे हो गया। जितना हम ऐसे होते गए, ये बैटरी चार्ज होने की बजाय, चार्ज होनी चाहिए थी ना, हमें मिल रहा था, इतना कुछ मिल रहा था, लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी ये चार्ज होने की बजाय एक्चुअली डिस्चार्ज हो रही थी। क्योंकि ये इसलिए डिस्चार्ज हो रही थी क्योंकि ये चाहिए की लाइन में खड़ी थी, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। यहाँ की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, देते जाना है। सिंपल एग्जाम्पल है, करके देखिएगा। जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो उस समय हम गुस्से की एनर्जी देते हैं ना, हम दूसरे को दे रहे हैं वो गुस्से की एनर्जी, हम उनको डांट रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ी डांट रहे हैं, हम उनको डांट रहे हैं, तो हम गुस्से की एनर्जी उनको दे रहे हैं। तो अनकंफर्टेबल किसको होना चाहिए, उनको होना चाहिए। बीमार किसको होना चाहिए, उनको होना चाहिए। लेकिन चेक करिएगा, जब गुस्से की एनर्जी दूसरे को दे रहे होते हैं तो खुद कैसा महसूस हो रहा होता है, यहां कितना कंफर्टेबल लग रहा होता है, शरीर कितना कंफर्टेबल फील हो रहा होता है, बात करने का तरीका क्यों बदल जाता है, कभी कभी गलत शब्द क्यों निकल आते हैं, कहने का भाव नहीं था फिर भी मुंह से क्यों निकल जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ अनकंफर्टेबल हो गया है। तो जब यहाँ अनकंफर्टेबल हो गया तो फिर कंट्रोल तो खो ही दिया, डांट तो उनको रहे थे, नुकसान तो उनका होना चाहिए, हम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। द नेगेटिव एनर्जी वॉज फॉर देम, सो वाई थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग हियर। हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई, हमारी पल्स क्यों बढ़ गई, हमारा मुंह क्यों लड़खड़ाने लगा, हम क्यों हिलने लगे। एनर्जी तो सारी उनके लिए थी, और कभी कभी तो सामने वाले पे कोई असर भी नहीं होता, वो एकदम स्थिर खड़े होते हैं, एकदम स्थिर। उनको पता है ये इनकी आदत है, थोड़े टाइम के बाद पूरी हो जाएगी, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। चेक करने की बात है, एनर्जी उनको दी जा रही थी, असर उधर होना चाहिए था, बीमार वो होने चाहिए थे, हार्ट बीट उनकी चेंज होनी चाहिए थी, हमारी क्यों चेंज हो रही है। जब यहां तक असर आ गया, विच मीन्स हमारी वाइब्रेशन का असर शरीर तक पहुंच गया, तो सोचिए यहां कितना असर हुआ होगा। तो ये प्रूफ है कि जो एनर्जी हम दूसरे को दे रहे हैं वो दूसरा स्वीकार करे न करे वो उसकी चॉइस है, लेकिन हम उस एनर्जी से बच नहीं सकते हैं। विच मीन्स वो एनर्जी सबसे पहले हमें मिलने वाली है। ये सेकेंड इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है, द एनर्जी विच आई गिव टू पीपल आई एम द रिसीवर ऑफ दैट एनर्जी. तो जो हम कहते हैं ना रिश्ते मीन्स गिव एंड टेक, यस रिश्ते मीन्स गिव एंड टेक, लेकिन कहाँ गिव और कहाँ टेक. कि जब हम वहां गिव कर रहे हैं और वहां से टेक कर रहे हैं वो नहीं, जब हम वहां गिव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम टेक कर रहे हैं. दैट इज वाई इट इज गिव एंड टेक, विच मीन्स वट एवर यू गिव टू पीपल यू आर द फर्स्ट वन हु गेट्स इट. क्योंकि वो एनर्जी सबसे पहले हम महसूस करते हैं, वो एनर्जी सबसे पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो वो एनर्जी सबसे पहले किसने टेक की, किसको गेट हुई वो एनर्जी सबसे पहले, वो हमें हुई. सो इट्स गिव एंड टेक, कि जो आप गिव करेंगे वो ही आप टेक करेंगे. सामने वाले से नहीं, खुद से टेक करेंगे दूसरों को गिव करते हुए. तो जब हम दूसरों को गुस्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, जब हम उनको क्षमा कर रहे हैं, जब हम उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब उनकी आदतें हमारे यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करती, जब हम शांत हैं, हम उनको वो प्यार और शांति रेडिएट कर रहे हैं, हम उनको वो एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट रेडिएट कर रहे हैं. लेकिन सबसे पहले अच्छा कौन फील करता है? हु इज द रिसीवर ऑफ दैट एनर्जी फर्स्ट? वो एनर्जी टेक पहले किसने की? वो हमने की है. इसीलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचते हुए सबसे पहले हमें अच्छा फील होता है. वो अच्छा फील करे ना करे वो उधर डिपेंड करेगा. हाँ, हमारी अच्छी वाइब्रेशंस जाकर उन पर प्रभाव जरूर डालेगी, लेकिन कब डालेगी, कितनी कैपेसिटी में डालेगी, कितनी जल्दी डालेगी, उसमें उनकी भी थोड़ा सा रोल होता है. लेकिन हमारी वाइब्रेशंस हम पर प्रभाव डालेंगी इमीडिएटली, जैसे हम उसको क्रिएट करते हैं. सो गिव एंड व्हाइल गिविंग वी आर द फर्स्ट पर्सन टू टेक इट, नॉट गिव एंड देन वेट टू गेट फ्रॉम देयर टू टेक इट. कि मैंने आपको इतनी रिस्पेक्ट की, आपने मेरी रिस्पेक्ट की, मैंने आपसे इतने प्यार से बात किया, आपने मुझसे प्यार से बात किया, नहीं, मैंने आपको रिस्पेक्ट दी और रिस्पेक्ट करते हुए मुझे रिस्पेक्ट फील हुए. आई वॉज वेरी स्टेबल, आई वॉज वेरी काम, आई वॉज वेरी पावरफुल. तो रिश्ते मीन्स गिविंग, और गिविंग में हमें ही मिल रहा है. पहले हम कहते ना हम ही गिव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमें कौन गिव करेगा? हम खुद को ही गिव कर रहे हैं. क्योंकि द रिलेशनशिप एनर्जी विल फ्लो लाइक दिस एंड दिस, सो द क्रिएटर विल गेट इट फर्स्ट. जो उस एनर्जी का रचयिता है, जो उस सोच उस वाइब्रेशन का रचयिता है, वो सबसे पहले उसको अनुभव करेगा और फिर हमसे निकलकर वहां जाएगी. अब अगर हम अंदर अच्छी एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे यहाँ पर, तो बाहर से हम कितना भी परफेक्ट बिहेव कर लें, ना हम अच्छा फील करते हैं, ना सामने वाला अच्छा फील करता है, और वो रिश्ता एक कमजोर फाउंडेशन पर आकर खड़ा हो जाता है. छोटी छोटी बातों में हिलता रहता है, छोटी छोटी बातों में हिलता रहता है, क्योंकि यहाँ का फाउंडेशन कमजोर है. सो दैट्स अनदर इक्वेशन टू रिमेम्बर, कि फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप इज नॉट हियर, फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप इज हियर. हम उनके लिए कैसा सोचते हैं, हम उनके लिए कैसा महसूस करते हैं, वो जब हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, हम उनके बारे में अंदर कैसा सोचते हैं? क्या हम अंदर क्रिटिकल और जजमेंटल होते रहते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? क्या हम ऐसा फील करते हैं तो वो एनर्जी सबसे पहले हमें मिलती है, हम यहाँ डाउन हो जाते हैं, और फिर ऑफकोर्स वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है और उन पर भी असर करती है. सो रिलेशनशिप मतलब हम अंदर अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारा नजरिया कैसा है लोगों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति और दुनिया के प्रति. तो ये रिलेशनशिप की इक्वेशन तो हमेशा ही होती है, लेकिन जब जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है, एक कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाती है, कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई प्रेशर्स आ जाते हैं, तो जब ये प्रेशर आता है, क्योंकि हमने उस प्रेशर को कोप करने के लिए अपने मन को रोज एनर्जाइज नहीं किया है तो जैसे प्रेशर आता है तो ये बैटरी जो थोड़ी सी पहले से ही डिस्चार्ज थी वो प्रेशर की वजह से स्ट्रेस जो हम क्रिएट करते हैं तो वो बैटरी और डिस्चार्ज हो जाती है, और जब वो बैटरी और डिस्चार्ज होती है तो हमारे रिश्तों पर और इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट होने लगते हैं, हमारा टॉलरेंस पावर कम होने लगता है, हमारी पावर टू एडजस्ट घटने लगती है, क्योंकि जितनी ये बैटरी कम होगी अब हमारी देने की क्षमता और घट जाएगी और हमें और चाहिए चाहिए होगा। तुम मेरे से एडजस्ट करो, आप मेरे से एडजस्ट करो, आप मुझे टॉलरेट करो, आप मुझे समझो, आपको पता नहीं है मेरे यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, यू शुड अंडरस्टैंड मी। तो जैसे ही हमारे जीवन में प्रेशर आएगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी, हमारा चाहिए और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जब वो चाहिए और ज्यादा बढ़ता जाएगा कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिश्ता इज नॉट अबाउट दिस, रिश्ता इज अबाउट दिस। तो अपने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिश्ते पर मेहनत नहीं, हमें सबसे पहले अपने साथ थोड़ी सी मेहनत, या मेहनत भी ना कहें, थोड़ी सी अटेंशन रखने की जरूरत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख ले, एक 3 महीने का एक्सपेरिमेंट उठाते हैं कि 3 महीने आप अपने मन का ध्यान रखना शुरू कीजिए। आप बाहर जो कर रहे थे वो करिए, उतना नहीं भी कर पा रहे तो थोड़ा सा कम भी कर लीजिए। हम कहते हैं आज हम अपने बच्चों को उतना नहीं दे पा रहे जितना पहले दे रहे थे, आज जीवन में ये परिस्थिति आ गई है। परिस्थिति से रिश्ता नहीं हिल सकता, देने में अगर कुछ कम हो गया उससे रिश्ता नहीं हिल सकता, उससे बाहर हमारी जीवन थोड़ी सी कम कंफर्टेबल हो सकती है कि अगर हमारे पास पहले एक 5 कमरे का मकान था और जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई कि हम 5 कमरे के मकान से 3 कमरे के मकान में आ गए, कोई बात नहीं, हमारी जीवन थोड़ी सी पहले से कम कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े मकान में थे तो ज्यादा कंफर्टेबल थे, थोड़े छोटे में है तो थोड़े कम कंफर्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एक्सेप्ट ये कम हो जाएगी, नहीं। लेकिन अगर यहां स्ट्रेस क्रिएट किया तो जरूर कम हो जाएगी, और फिर हम कहेंगे क्या कहें, बातें ऐसी आई है ना इसलिए हमारे रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं, इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। रिश्ता इज नॉट बेस्ड ऑन बाहर क्या कम है, बाहर क्या ज्यादा है, ना रिश्ते बाहर ज्यादा होने से ज्यादा अच्छे हो रहे थे और ना रिश्ते बाहर कुछ कम होने से कम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू होल्ड ऑन टू कि जीवन में कितने भी प्रेशर्स आ जाएं, रिलेशनशिप कैन नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रेशर अगर हम अपना ध्यान रोज कर रहे हैं। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि 3 महीने के लिए इसका ध्यान रखना शुरू कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम देना होता है उसके लिए, लेकिन अगर हर रोज 1 घंटे का समय अपने लिए रखें, 1 आवर डेली यहां अपने आप के साथ रिश्ता, जब तक अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप के साथ रिश्ता मतलब मेरा सोचने का तरीका, एम आई थिंकिंग नाइस, एम आई थिंकिंग राइट, एम आई एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, एम आई ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, एम आई ट्रस्टिंग माई सेल्फ, अपने आप के साथ रिश्ता, एम आई रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, अपने आप को सम्मान देना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप पर विश्वास करना, है ना, कोई आदत बदलनी होती है, कोई कहता है आप ये कर लो तो हम कहते हैं ना मेरे से नहीं हो सकता, दूसरों के लिए क्या कहते हैं, आप कर लोगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम विद यू, आप करो, आई एम श्योर सक्सेस मिलेगी, अपने आप को कहते हैं नहीं ये आदत मेरी बड़ी पुरानी है, ये नहीं चेंज होती, खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये रिश्ता पहले अपने आप से बनाना पड़ता है कि खुद को सम्मान देना, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। आजकल बहुत लोग कहते हैं आई डोंट लव माई सेल्फ, वॉट इज सेल्फ लव, जब तक सेल्फ लव नहीं होगा तब तक प्यार रेडिएट हो नहीं सकता। कोई भी चीज दूसरे को देने के लिए पहले क्रिएट करनी पड़ती है। आज अपने परिवार का फिजिकली ध्यान रखने के लिए आपको मनी अर्न करनी पड़ती है। आप बिना उसको अर्न करे जितने कंफर्ट्स आप देना चाहते हैं उतना आप नहीं दे पाते। तो जितने जितने आप उनको कंफर्ट्स देना चाहते हैं उतना 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 आपको और अर्न करना पड़ता है। आप कम अर्न करके उनको ज्यादा कंफर्ट्स तो नहीं दे सकते। तो हर एक डिसाइड करता है कि मैं अपने परिवार को कितने कंफर्ट्स देना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को कितने महंगे स्कूल में भेजना चाहता हूं। हर एक अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन जो आप देना चाहते हैं वो पहले अर्न तो करना पड़ेगा ना। अरे अगर एक मदर अपने बच्चों को फिजिकली हेल्दी बनाना चाहती है तो उनके लिए वो अच्छा खाना बनाना भी तो पड़ेगा ना। सिर्फ चाहने से तो नहीं हो जाएगा, बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं तो वो ऐसे ही दे सकते हैं। उसको पहले यहाँ बनाना पड़ेगा, उसको यहाँ पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके फिर हम वो दूसरों को दे सकते हैं। तो जब तक सेल्फ लव नहीं होगा, मतलब यहाँ लव क्रिएट हुआ नहीं होगा, तो लव हमसे दूसरों को रेडिएट कैसे होगा, कैसे होगा? तो सेल्फ लव मतलब हमारी हर एक सोच प्योर होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए। चाहे सिचुएशन अच्छी ना हो, सिचुएशन हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती है, उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन उतार चढ़ाव बाहर होना चाहिए। उतार चढ़ाव अंदर नहीं, उतार चढ़ाव बाहर, अंदर स्थिर और सिर्फ ऊपर ही ऊपर ही ऊपर। ऊपर मतलब मन की स्थिति और आगे बढ़ रही है, बैटरी और चार्ज होती जा रही है। उतार चढ़ाव मतलब कभी चार्ज हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी चार्ज हो रही है, कभी डाउन हो रही है, तो फिर वो तो नहीं। उतार चढ़ाव बाहर हो सकते हैं, अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर चढ़ते जाना, विच मीन्स वाइब्रेशन हायर एंड हायर। तो सेल्फ लव मतलब बाहर कोई भी परिस्थिति हो, सामने वाला आपसे कैसा भी व्यवहार करे, सामने वाला आपके साथ गलत भी करे, कोई आपके साथ गलत भी बात करे, वो सब कुछ बाहर है, लेकिन आप जैसा सोचते हैं वो आपकी एनर्जी बन जाएगी। अगर हम हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के व्यवहार के साथ अगर हम यहाँ सही सोचेंगे तो हम खुद खुद को अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। That is self love. अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो खुद को अच्छी एनर्जी देनी है। किसी ने अगर हमारे साथ कुछ गलत किया, हमारे साथ कुछ गलत बात की, कोई गलत व्यवहार किया, वो तो उनका कर्म था, वो तो उनकी गलती थी, उसका नुकसान तो उनको होगा। लेकिन उनके व्यवहार के बारे में सोच सोच कर उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मैंने उनके साथ इतना अच्छा किया, उन्होंने ये दिया रिटर्न में, मेरे साथ ऐसा बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, ये जो चलता है यहाँ अंदर और चलता ही जाता है, ये फिर हम यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं? कर्म तो उनका था, नुकसान हम कर रहे हैं। दैट मीन्स वी डोंट लव आवर सेल्फ। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसका नुकसान नहीं होने देते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको दुख नहीं देते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको तंग नहीं करते हैं। हम खुद तो खुद को कितना तंग करते रहते हैं ये सारी बातों को लेकर। 20 साल पहले हुई बात भी हमें भूलती नहीं है। दिस इज ट्रबलिंग आवर सेल्फ। दूसरे की गलती के लिए हम उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं आई कैन नॉट फॉरगिव देम, बट इट इज नॉट अबाउट फॉरगिविंग देम। उनको हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? वो तो उनका कर्म था, उनका कर्म का कॉन्सिक्वेंस उनके पास तो आना ही है। कोई भी किसी को क्षमा कर दे लेकिन कर्म के कॉन्सिक्वेंस को तो नहीं रोक सकता है। तो वो तो उनका कर्म था, लेकिन जो हमने यहाँ दर्द क्रिएट किया, अभी तक उस बात को पकड़ के रखा, इतना सब कुछ जो यहाँ क्रिएट किया, तो दर्द हमें हुआ, अभी तक भी दर्द होता है। तो फॉरगिव एक्चुअली किसको करना है, क्षमा किसको करना था, क्षमा अपने आप को करना था, कैसे करना था, उस बात को यहां से रिलीज करके, लेट गो करके, पूरा हुआ, खत्म हुआ, बात थी, चले गए। वो उनका व्यवहार था उस दिन, उनका नजरिया था, उनका मूड था, उनका संस्कार था, हो सकता है उनका संस्कार है। बट वाई एम आई ट्रबलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्यों इतना दर्द दे रही हूं, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ लव। लेकिन हम कहते हैं ये तो नेचुरल है ना, वो वाली थॉट तो आएगी ही, वो वाली थॉट तब आएगी, वो दर्द तब होगा, वो अंदर चलता ही जाएगा तब होगा जब ये वाली बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 3 महीने के लिए हम अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, देखने के लिए कि इसका असर कोई रिश्तों में पड़ता है। वी नीड टू चेक ना, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला हमने एक्सपेरिमेंट तो सारा कर लिया कि हमने इतना कुछ किया उनके लिए फिर भी हमारा रिश्ता हिल जाता है, तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि थोड़ा कुछ कर लेते हैं अपने लिए और देखते हैं क्या उसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। तो 3 महीने के लिए अपने मन का ध्यान रखना शुरू करते हैं, विच मीन्स आत्मा को पावरफुल बनाना शुरू करते हैं, अपने आप के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अपने आप के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाने के लिए उस हायर पावर के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ रिश्ता अच्छा करने के लिए इस बैटरी को चार्ज करना है। अब ये बैटरी खुद को खुद चार्ज करे इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम लगेगा, अभी डाउन है, अभी इसको हम चार्ज करें फुल चार्ज करें इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बैटरी चार्ज हो और जल्दी से चार्ज हो, इसका सिंपलेस्ट तरीका पावर हाउस से कनेक्ट करना। तो कई बार हम कहते हैं ना, जरूरी है क्या भगवान को याद करना? नहीं, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के बिना क्या हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते? आई डोंट बिलीव इन गॉड। इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग इन गॉड, इट्स अबाउट कनेक्टिंग टू गॉड। बिलीव करेंगे कैसे? बिलीव तो तब करेंगे ना जब एक्सपीरियंस करेंगे। किसी भी रिश्ते में हमें बिलीव कब होता है? जब हमने उस रिश्ते को एक्सपीरियंस किया होता है, हमने उस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया होता है। तो कभी कभी अगर हमने परमात्मा की शक्ति का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, परमात्मा के प्यार का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, परमात्मा की गाइडेंस का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो हमें लगता है कि परमात्मा के साथ क्या रिश्ता जोड़ना है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद अ हायर पावर, क्योंकि उस पावर हाउस के साथ जब रिश्ता होगा तो उस पावर हाउस के साथ वो एक रिश्ता है जिसमें हमें गिविंग नहीं, जिसमें हमारा रिसीविंग होता है। वी आर रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की शांति, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा का ज्ञान। मुझ आत्मा को रिसीव करना है, क्योंकि बैटरी पावर हाउस को देती नहीं है, बैटरी को देती है, बैटरी से लेती है, लेकिन बैटरी पावर हाउस को देती नहीं है, बैटरी पावर हाउस से लेती है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, प्यार का सागर। तो अगर कभी लगे भी कि मुझे प्यार चाहिए, कितना मैं देती रहूं सिर्फ मुझे चाहिए, तो लेना है ना, तो कहां से लेना पड़ेगा? जो प्यार का सागर है। तो ये एक और इक्वेशन है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर मुझे चाहिए, क्योंकि हम सबको चाहिए, क्योंकि अगर चाहिए नहीं होता तो ये बैटरी 100% चार्ज्ड हो गई होती, तो अब उसको 100% चार्ज करने के लिए हमें चाहिए। लेकिन किससे चाहिए? एक और डिस्चार्ज बैटरी से तो नहीं चाहिए? ये चाहिए भी तो करेक्ट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ना। हम डिस्चार्ज है, सामने वाला भी डिस्चार्ज है, और हम कहते हैं इनसे चाहिए, उनको तो देना है। तो इधर इक्वेशन वेरी क्लियर, लेकिन चाहिए तो हमने पावर हाउस से लेना है। तो परमात्मा के साथ एक रिश्ता हमारे बाकी सारे रिश्तों को बहुत सुंदर बना देता है, क्योंकि ये कैसे वर्क करता है? कि परमात्मा के साथ जब रिश्ता जुड़ता है, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्तियों को हम अपने अंदर भरते हैं, तो ये बैटरी चार्ज होने लगती है। जैसे ये बैटरी चार्ज होने लगती है राइट फ्रॉम डे वन, ऐसा नहीं है कि इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें बहुत साल लगने वाले हैं। राइट फ्रॉम डे वन जब ये बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, तो सिंपल इक्वेशन है कि जितनी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, उतना हमारा लोगों से चाहिए कम होता जाएगा और हमारी देने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जितना देने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उतना एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशन में एक्सेप्टेंस आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन में उतना फॉरगिवनेस आ जाएगी, हर्ट नहीं, उतना पेशेंस आ जाएगी, इम्पेशेंस नहीं, उतना लव आ जाएगा, एंगर नहीं। ये सारी चीजें चेंज होने लग जाएंगी। उतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? यहाँ की बैटरी चार्ज होने लग गई, और जैसे यहाँ बैटरी चार्ज होने लग गई, रिश्ता बदलना शुरू हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल और जजमेंटल का संस्कार था ना, मतलब लोगों की कमजोरियां दिखाई देती थी, लोगों ने हमारे लिए जो नहीं किया वो ही दिखाई देता था मन पर, इनको ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए। इंटेंशन बहुत अच्छी है कि इनको चेंज होना चाहिए, लेकिन एनर्जी जजमेंटल की थी, वो भी खत्म हो जाएगी। एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स। जजमेंटल नहीं, ब्लेसिंग्स। इनको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है, ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है। रिजेक्शन मतलब आप अभी जैसे हैं वो मेरे लिए आप ठीक नहीं है, आपको चेंज होने की जरूरत है, चाहे आपके ही बेनिफिट के लिए, लेकिन आपको चेंज होने की जरूरत है, आप परफेक्ट नहीं है। ये रिजेक्शन की एनर्जी है। हम ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम अंदर फील तो कर रहे हैं ना, और ये एनर्जी सामने वाले को मिलती है एंड सामने वाला अच्छा नहीं फील करता है। दूसरों के अंदर चेंज होने के लिए हमें दूसरों को ब्लेसिंग्स देने की जरूरत है। ब्लेसिंग इज अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो हमें दूसरों को चेंज, अगर हमारी प्रेरणा है उनके लिए कि उनको चेंज होने की जरूरत है, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स देने की जरूरत है। विच मीन्स आपको ऐसे 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 होना चाहिए, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, क्योंकि आत्मा है ना, वो भी सिर्फ एक रिश्ता लेबल वाला नहीं है, प्योर सोल है। एंड ये वाली जो आदत है, ये आपके अंदर ये आदत परफेक्ट है, मतलब जो चेंज करना है उसके लिए भी एक ब्लेसिंग देनी है। सपोज कि कोई अपना काम ठीक से पूरा नहीं करता है, कोई लेट आता है, कोई झूठ बोलता है, कोई अपना सामान जगह पर नहीं रख रहा है, तो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, कोई डाउट करता है, किसी के अंदर क्रिटिसिज्म की आदत है, ये उनकी आदतें हैं। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि आप क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, आप डाउट बहुत करते हैं, आप दुख देते हैं, हम अगर आप ऐसे सोचेंगे तो हम खुद भी ऐसे हो जाएंगे और उनको भी रिजेक्शन की एनर्जी मिलेगी। अब हमें उनको ब्लेसिंग भेजनी है, दुआ भेजनी है। एंड दुआ मीन्स कि जो हम चाहते हैं कि वो हो, तो हमें वो ब्लेसिंग भेजनी है कि आप ये हैं, आप ये हैं। और जैसे हम ये ब्लेसिंग भेजेंगे, आप ये हैं, वो ब्लेसिंग, वो वाइब्रेशन, वो अब्सॉर्ब करेंगे और वो वैसे बनते जाएंगे। सपोज कोई झूठ बोलता है, आदत है, वो आत्मा का संस्कार है, लेकिन हमें क्या ब्लेसिंग भेजनी है? यू आर अ पावरफुल सोल, आप शक्तिशाली आत्मा है, आप हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी तो आपका संस्कार है, ये हमारी सोच। अब ऐसा लगता है ये तो झूठ है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। हाँ, वो झूठ बोलते हैं। कितनी बार झूठ बोलते हैं? दिन में एक बार, दिन में पांच बार, दिन में दस बार। वैसे इतनी बार तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में दस बार झूठ बोलते हैं। अगर कोई दिन में दस बार भी झूठ बोल ले, लेकिन वो बाकी हजारों बार तो सच ही बोल रहा है ना, कोई ऐसा है जो हर बात में झूठ बोलता है? ऐसा कोई कभी मिला? हाँ, कोई ज्यादा झूठ बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ये तो हर बात में झूठ बोलता है। हर बात में कोई झूठ बोल नहीं सकता है, कोई झूठ बोल नहीं सकता है हर बात में, लेकिन हम इतने स्ट्रॉन्ग लेबल्स लगा देते हैं ये तो हर बात में झूठ बोलते हैं। और जब ये वाइब्रेशन हमारी उनको जाएगी तो उनका वो झूठ बोलने का संस्कार और पक्का होता जाएगा, क्योंकि हम झूठ बोलने के संस्कार पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मा के पास ऑनेस्टी का भी संस्कार है, क्योंकि दिन में हजार बातें वो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ के संस्कार को देख रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी झूठ के संस्कार पे जा रही है, तो वो झूठ का संस्कार और पक्का होता जाएगा। अब जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होती जाएगी, उनका व्यवहार हम डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम उनको ब्लेसिंग भेजेंगे। जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तब हम उनकी उस वीकनेस पे फोकस करते हैं, जब हम स्टेबल होते हैं ना तब हम उनकी विशेषताओं पर फोकस करते हैं, और जब हम उनकी विशेषताओं पर फोकस करते हैं तब हम उनके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं, और तब वो एनर्जी उन तक पहुंचकर एक ब्लेसिंग बन जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम दूसरे के लिए कौन सी थॉट क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हम मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल स्टडी से इस बैटरी को चार्ज करेंगे, विच मीन्स परमात्मा की शक्ति से अपने आप को यहाँ भरपूर करेंगे, उतना हम दूसरे के व्यवहार में डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम स्टेबल रहेंगे, उतना हमारे मन से उनके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट होगी, और जितनी वो ब्लेसिंग क्रिएट होगी उतना हम पीसफुल रहेंगे, हम रिश्ते में देने वाले होंगे, वो उन तक एनर्जी पहुंचेगी, उनको वो शक्ति मिलेगी, और वो शक्ति जब उनको मिलेगी तो उनकी बैटरी भी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, और जब उनकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी उनकी वो आदत, उनका वो संस्कार बदल जाएगा। व्हाट अ बिग गिफ्ट इन रिलेशनशिप। हम चाहते हैं ना कि हमारे आसपास सारे जो हैं उनके संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, उनकी आदतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके काम करने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ तभी होगा जब हम यहाँ पर परफेक्ट होंगे और उनके लिए वो परफेक्ट एनर्जी, वो ब्लेसिंग की एनर्जी क्रिएट कर रहे होंगे। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट अपनी बैटरी को चार्ज करने का, क्या करने से? परमात्मा के साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ने से, अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। इट्स नॉट अबाउट डू आई बिलीव इन गॉड, इम्पोर्टेंट इज डू आई एक्सपीरियंस गॉड। क्या मुझे अनुभव होता है परमात्मा की शक्ति का? और अगर मुझे अनुभव होता है तो उसका डायरेक्ट प्रूफ है कि वो शक्ति अगर मुझे यहां मिल रही है, कभी कभी नहीं, सारा दिन हम सबको परमात्मा की मदद, परमात्मा की शक्ति का अनुभव होता है। हम कहते हैं मेरे जीवन में वो बात आई, मुझे भगवान ने मदद की, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मैंने भगवान से मदद मांगी थी और मुझे भगवान ने मदद की और मेरा वो काम ठीक हो गया। डेफिनेटली डेफिनेटली वो हमारा माता पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, उसके साथ हमारे सारे रिश्ते हैं, वो मदद तो करेगा ही, उसकी शक्ति तो हमें मिलेगी ही, लेकिन उसकी शक्ति हमें कब मिलती है? जब हम उसकी शक्ति को लेते हैं। इट्स लाइक द सन, सूर्य है, वो है, उसकी लाइट, उसकी लाइट और उसकी शक्ति तो कांस्टेंट है, लेकिन हम में से कौन कौन वो सूर्य की शक्ति को लेता है? हम अपनी खिड़की को कितनी देर सारा दिन खुला रखते हैं? हम कितनी देर बाहर खड़े होकर उस सूर्य की शक्ति को संपूर्ण रीति अपने अंदर भरते हैं? तो जब अपने अंदर भरेंगे उतनी देर हमें उसकी शक्ति मिलेगी, कभी कभी भरेंगे तो कभी कभी मिलेगी, रोज भरेंगे तो रोज मिलेगी, सारा दिन भरेंगे तो सारा दिन मिलेगी। तो इट्स नॉट अप टू द सन, वो सूर्य पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सूर्य तो अपनी शक्ति कॉन्स्टेंटली दे रहा है, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको अपने अंदर कितना भर रहे हैं। इसी तरह परमात्मा, ऐसा नहीं है भगवान इनको मदद कर रहा है मेरी नहीं मदद कर रहा, इसकी बात पूरी कर रहा है मेरी नहीं बात पूरी कर रहा। भगवान एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? प्यार की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, वो खुशी और आनंद की शक्ति है, वो पवित्रता की शक्ति है, वो सारी शक्तियां हैं जो मुझ आत्मा को चाहिए। जैसे सूर्य वो शक्ति है जो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, वो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। तो आजकल डॉक्टर हमें कहते हैं ना, थोड़ी देर सनलाइट में जाया करो तो ये सारी डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी। तो विच मीन्स सन की लाइट को लेकर अपने बॉडी को चार्ज कीजिए। अगर हम सन की लाइट को लेकर अपनी बॉडी को चार्ज करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। इसी तरह गॉड की लाइट लेकर, परमात्मा की लाइट और माइट लेकर आत्मा को चार्ज कीजिए। और अगर आत्मा को चार्ज करेंगे तो आत्मा हेल्दी रहेगी, और अगर आत्मा हेल्दी रहेगी तो सारे रिश्ते हेल्दी रहेंगे। तो परमात्मा की लाइट और माइट मतलब सबसे पहली चीज परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि भगवान हमें वो ज्ञान देता है कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, सामने वाला कुछ भी करे मुझे कैसे सोचना है, मेरा हर संस्कार कैसा होना चाहिए, मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। इसकी पहले हमें नॉलेज चाहिए। हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, इसमें क्या सीखना है, हमें सीखना है। क्योंकि आजकल हम क्लियर नहीं है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हमने कहा एक्सपेक्टेशंस नेचुरल है, हमने कहा हर्ट नेचुरल है, हमने कहा डिजायर्स नेचुरल है, हमने कहा अटैचमेंट नेचुरल है। हमने तो रिश्तों में अटैचमेंट को नॉर्मल कह दिया। तो जब हमने अनकंफर्टेबल इमोशंस को नेचुरल कह दिया तो हमें ज्ञान की जरूरत है कि क्या सही है, उसको समझने की जरूरत है। तो परमात्मा हमें सही सोचने का तरीका, सही संस्कार, श्रेष्ठ कर्म, इसका ज्ञान देते हैं। अब ये ज्ञान हमें रोज अपने अंदर भरना पड़ेगा, रोज भरना पड़ेगा। क्योंकि जब वो रोज 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 अंदर जाएगा, कोई एक दिन में हम एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पे थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे। शरीर को अगर बाहर सुबह 7 बजे ले जाए और सूर्योदय के सामने वहां खड़े हो जाए तो एक दिन में तो शरीर हेल्दी नहीं हो जाएगा। उसको तो रोज लेके जाना पड़ेगा और जीवन भर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की एनर्जाइजिंग उस सूर्य से हो रही है। तो इसको रोज लेके जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कितने दिन, कितने साल, नो, डेली। क्योंकि जिस दिन बंद कर देंगे तो ये शरीर फिर अफेक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि हमने उसको वो एनर्जी नहीं दी, हम अपने आप को घर में बंद करके बैठ गए। सेम परमात्मा की शक्ति के साथ हमें वो परमात्मा का ज्ञान रोज अपने अंदर भरना पड़ेगा, रोज रोज भरना पड़ेगा। ये जिसको हम अटैचमेंट को नॉर्मल कहते हैं ना, ये अटैचमेंट दर्द देती है, सिर्फ हमें नहीं देती, सामने वाले को भी देती है, बहुत दर्द देती है। हमने लगा अटैचमेंट मींस लव, तो जहां हम बहुत प्यार है हम कहते हैं वेरी अटैच्ड टू देम। ये बार बार वर्ड बोलना भी हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अटैचमेंट मतलब क्या? अटैचमेंट मतलब मेरा मन उनके मन पर डिपेंडेंट हो गया है। जब भी हम किसी चीज पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, डिपेंडेंसी एक वीकनेस है। अगर हमारे मन की स्थिति किसी के मन की स्थिति और व्यवहार पर डिपेंडेंट हो गई तो फिर हर्ट होना नेचुरल है, क्योंकि वो हमेशा हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। वो परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन हमारे अनुसार परफेक्ट हो ये नहीं हो सकता है। और अगर हमारे मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट है तो फिर हर्ट होना नेचुरल हो जाएगा। तो अगर आपके परिवार में किसी के जीवन में कोई बात आती है, हम परेशान हो जाते हैं, कोई सही व्यवहार नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं, और फिर हम उनको क्या कहते हैं, आई एम अटैच्ड टू यू ना, तो बुरा तो लगेगा ही। ये लाइन को चेंज करना है। क्योंकि जैसे ही मुझे बुरा लगा, मैंने अपने रिश्ते पर घाव डाली है. I have created a conflict here and then I've created a conflict here in the relationship. क्योंकि मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा मैंने मतलब बुरी एनर्जी क्रिएट कर दी क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ. अटैचमेंट नॉर्मल कैसे हो सकती है? अटैचमेंट कैसे नॉर्मल हो सकती है? डिपेंडेंसी नॉर्मल कैसे हो सकती है? एडिक्शन नॉर्मल कैसे हो सकती है? इन सब चीजों को हम हेल्दी कैसे कह सकते हैं? डिटैचमेंट नॉर्मल है. अब डिटैचमेंट वर्ड से हम डर जाते हैं, हम कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली. डिटैचमेंट वर्ड का मीनिंग समझना है, फिर पता चल जाएगा हमें कि नॉर्मल क्या है. जब हम उसको फील करेंगे, व्हाट फील्स नॉर्मल, रिश्ते कब नॉर्मल होते हैं, अटैचमेंट में या डिटैचमेंट में. डिटैचमेंट फिजिकल नहीं है. डिटैचमेंट मतलब ये नहीं हम दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, हमें एक दूसरे की परवाह नहीं रहती. दैट इज नॉट डिटैचमेंट, दैट इज इनडिफरेंस. इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. हम कहते हैं ना इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ हो कुछ रहे कुछ, इसको तो कोई अपनी जिम्मेवारी ही नहीं है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता. दैट इज केयरलेस, दैट इज इनडिफरेंस. लेकिन हम कभी कभी गलत शब्द यूज करते हैं. हम कहते हैं ये तो डिटैच्ड हो गए. ये डिटैच्ड नहीं हुए, ये सिर्फ दूर हो गए हैं. दूर होना इज नॉट डिटैचमेंट. अटैचमेंट क्या है? जब हमारे मन की स्थिति दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाती है, ये अटैचमेंट है. हम दूसरे देश में दूर रहकर भी अटैच्ड हो सकते हैं और हम साथ साथ बैठ कर भी डिटैच्ड हो सकते हैं. क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट यहाँ नहीं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट यहाँ है. तो अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर है. उधर कुछ भी अगर बदलेगा तो मैं यहाँ बदल जाऊंगी, ये अटैचमेंट है. तो जब ये अटैचमेंट होती है तो फिर वो हर्ट, रिजेक्शन, दर्द, दुख क्रिएट होता है. तो वो एनर्जी क्रिएट होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, वहां वाइब्रेट होती है, वहां भी डिस्चार्ज होता है, रिश्ते में गांठें बढ़ती जाती हैं. लेकिन डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है. विच मीन्स सामने वाला जो व्यवहार करे, जिस तरह से बात करे, मेरा ध्यान रखे न रखे, वो उनका व्यवहार है. लेकिन उनके व्यवहार में हम राय देंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन करना. लेकिन हम उनके व्यवहार में डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे. विच मीन्स यहाँ हम डिटैच्ड हैं. उनका व्यवहार यहाँ है, उनका व्यवहार यहाँ नहीं चल रहा है. हम नहीं डिस्टर्ब हो रहे अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं. अगर उनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आया है, फैमिली में होता है ना, सपोज फैमिली के किसी मेंबर की लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आए हैं, जब वो उतार चढ़ाव आता है तो वो थोड़ा सा कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं. तो उनको हमसे किस चीज की जरूरत है? शक्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है. लेकिन अगर हम अटैच्ड हैं तो उनसे ज्यादा चिंता तो हमें हो जाती है. और जब हमें चिंता हो जाएगी तो हम यहाँ दर्द क्रिएट करेंगे, वो वहां वाइब्रेट करेगा. तो फिर वो कहेंगे आप थोड़ा मेरे से दूर रहो, गिव मी माई स्पेस, आई नीड स्पेस. मैं आपके साथ अभी इस समय नहीं बैठ सकती. क्यों? हम तो आपके साथ बैठना चाहते हैं, वो नहीं कंफर्टेबल है बैठने के लिए हमारे साथ, क्योंकि उनको हमसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है. क्योंकि हमारी वाइब्रेशन चिंता की है, हमारी वाइब्रेशन दर्द की है, और वो दर्द की वाइब्रेशन उनको भी, वो शक्ति उनकी घटा रही है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज इक्वल टू अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस. ये शब्द हमें कितना अच्छा लगता है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. शब्द अच्छा लगता है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे से प्यार की एनर्जी वाइब्रेट करती रहे, मेरे अंदर कोई हर्ट, कोई दर्द नहीं आए, क्योंकि फिर वो मेरे से वो चला जाता है. तो अनकंडीशनल लव मतलब वो चाहे कुछ भी करे, मेरे से प्यार की एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए. हम कहते हैं हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन हमसे सारा दिन प्यार की एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, क्योंकि हमसे वो रेडिएट होगा जब यहाँ चलेगा. अगर मैं 2 मिनट के लिए भी हर्ट हूं तो 2 मिनट के लिए मेरे से हर्ट की एनर्जी रेडिएट हो रही है. सो व्हाट इज अनकंडीशनल लव? जब यहाँ परफेक्ट होंगे तब अनकंडीशनल लव अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, और यहाँ परफेक्ट होने के लिए अनकंडीशनल लव रेडिएट करने के लिए इसको उधर से डिटैच्ड होना पड़ेगा. एंड डिटैच्ड मीन्स मेरा मन किसी और पर निर्भर नहीं है. आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब मैं आत्मा किसी पर निर्भर नहीं हूं. इमोशनली नो डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंस इज डिटैचमेंट. इंडिपेंडेंस यहां स्वतंत्र, यहां जो भी चल रहा है वो मेरी चॉइस से चल रहा है. ऐसे नहीं कोई भी आया कुछ भी कहा और मैं यहाँ अफेक्ट हो गई. अटैचमेंट हमारी सिर्फ परिवार से नहीं होती है. हमें लगता है हम परिवार से बहुत अटैच्ड हैं, फ्रेंड्स से बहुत अटैच्ड हैं. अटैच्ड तो हम बहुत लोगों से हैं, अटैच्ड तो हम बहुत बातों से हैं. जिस जिस चीज का प्रभाव यहाँ पर पड़ जाता है हम उससे अटैच्ड हैं. कोई भी सीन से हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम उससे अटैच्ड हैं. आज आप ट्रैफिक में अटक जाते हैं 2 मिनट के लिए, सामने वाला गलत तरह से चला रहा है गाड़ी, हॉर्न बहुत बार बजा रहा है, पर हम इरिटेट हो गए तो उस क्षण के लिए हम उससे अटैच्ड हो गए. हम अटैच्ड हो गए कि उसके बिहेवियर ने यहां पर असर डाल दिया, मतलब मेरा मन उसके बिहेवियर से अटैच्ड था उस टाइम. दैट इज अटैचमेंट. नाउ डिटैचमेंट, वो गलत गाड़ी चला रहे हैं, वो हॉर्न ज्यादा बजा रहे हैं, हम उनको राय दे सकते हैं अगर दे सकते हैं तो, लेकिन उसके अलावा यहाँ हम स्थिर हैं. दिस इज डिटैचमेंट. फिर वो चाहे सड़क पर एक अननोन स्ट्रेंजर है या फिर वो हमारे परिवार का सदस्य है, बच्चा है, स्पाउस है, पेरेंट है, वो उनका व्यवहार, उनका संस्कार, लेकिन हम स्टेबल हैं, पावरफुल हैं, डिटैच्ड हैं, अनकंडीशनली गिविंग हैं, तो रिश्ता यहाँ हमेशा ब्यूटीफुल होगा. और जब रिश्ता यहाँ हमेशा ब्यूटीफुल होगा तो यहाँ हमेशा स्ट्रांग होगा. हमेशा, चाहे कितनी भी बातें बाहर आ जाए, चाहे प्रेशर्स कोई भी क्रिएट हो जाए, यहाँ अगर बैटरी चार्ज्ड है, और वो तब चार्ज्ड होगी अगर हम उस बैटरी को डेली बेसिस पे चार्ज करेंगे. ऐसा नहीं थोड़े दिन चार्ज कर लिया और वो बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी. इस बैटरी को भी रोज चार्ज करना पड़ता है. अपने घर में जितनी टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं, उस बैटरी को चार्ज करते हैं ना, इस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है. ये बैटरी धीरे 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 चार्ज होती है. क्यों? उसके लिए क्या ध्यान रखना है? अपनी सोच, अपने संस्कार, अपने कर्म, इमोशनली इंडिपेंडेंट, और उसको करने के लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है. तो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, परमात्मा के साथ कनेक्शन, परमात्मा के ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसका जीवन जीने के तरीके का जो ज्ञान है उसको अपने अंदर रोज भरे. फिर परमात्मा के साथ एक रिश्ता, मतलब अपनी हर बात परमात्मा के साथ शेयर करें, परमात्मा को हमेशा याद रखें, परमात्मा की महिमा करते रहें. जितना हम यहाँ भगवान को याद रखते हैं उतना यहाँ बैटरी चार्ज होती जाती है. सारा दिन में हर कर्म करने से पहले एक बार उससे पूछें. हम कितनों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कितने लोगों से पूछते हैं. जरूरी थोड़ी है उनकी राय हमारे लिए सही निकलेगी, उनकी राय उनकी कैपेसिटी से होती है, लेकिन हमें वो राय चाहिए जो हमारे लिए सही है. तो उसके लिए हमें उससे पूछना चाहिए, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है. दिस इज अ रिलेशनशिप, नॉट अ 15-मिनट रिलेशनशिप, नॉट अ 1-आवर रिलेशनशिप, अ पर्सनल ब्यूटिफुल पावरफुल कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप. एक हमेशा रिश्ता, हमेशा प्यारा सा पर्सनल रिश्ता. ये तो वर्ड ही नहीं आ सकता, डू आई बिलीव इन गॉड. बोलो परमात्मा के साथ तो मेरा बहुत सुंदर रिश्ता है. तो मेडिटेशन मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना. तो परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार, भगवान से हमें क्या मिलता है? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। और जब हमें उससे अनकंडीशनल लव मिलेगा, तब हम किसी और को अनकंडीशनल लव दे सकेंगे। जो चीज हमें ही नहीं मिली होगी, हमारे पास होगी नहीं, वो हम किसी और को देंगे कैसे? तो अनकंडीशनल लव पहले हमें चाहिए, लेकिन हमें लोगों से नहीं मिल सकता। हम लोगों से अनकंडीशनल लव की अपेक्षा कर रहे हैं, हमें परमात्मा से अनकंडीशनल लव मिलेगा। और परमात्मा से वो अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस मिलकर ये आत्मरूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो औरों को अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस देना ये बहुत बहुत सहज हो जाता है। तो मेडिटेशन वो विधि है, ज्ञान और मेडिटेशन ये दोनों जीवन का हिस्सा बन जाए, ऐसा हिस्सा बन जाए कि ये जीवन जीने का तरीका बन जाए। इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, लेकिन ये धीरे धीरे बनती है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट अपना शुरू करना है। आप जहां जहां रहते हैं, आपके नजदीक राजयोग का मेडिटेशन सेंटर है, ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, वहां पर जाकर आप मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं सेंटर से कनेक्ट होकर, लेकिन सेंटर पर जाकर सीखेंगे तो बहने वहां का वातावरण, वहां की वाइब्रेशंस, वो भी एक शक्ति देती है। तो मैं कौन ये समझना, मेरे संस्कार क्या ये समझना, मुझे संस्कार कैसे चेंज करने हैं, श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं, ये सारा ज्ञान अपने अंदर भरना, परमात्मा कौन, परमात्मा से रिश्ता कैसे बनाना है, परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर कैसे भरनी है, मेडिटेशन इसको भी सीखना। तो जब हम ये सीख लेते हैं और फिर हम इसको रोज करना शुरू करते हैं कि रोज भगवान का ज्ञान स्टडी करें, उसकी एक एक बात को अपने सोचने का तरीका बना दें। जो चीज रोज अंदर जाएगी ना, वो यहाँ का हिस्सा बन जाएगी, यहाँ का हिस्सा बन जाएगी। जब हम अपने अंदर सिर्फ दुनिया की बातें भरते हैं, सिर्फ दुनिया की बातें भरते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, आसपास की बातें, पड़ोस की बातें, सारी दुनिया की बातें भरते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका दुनिया के नजरिए से हो जाता है। और अगर दुनिया के नजरिए से हमारा सोचने का तरीका हो गया, तो फिर ये बैटरी हमेशा चार्ज नहीं रहेगी। लेकिन परमात्मा की बातें जब हम भरते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका उसके ज्ञान के आधार से हो जाता है। और जब उसके ज्ञान के आधार से सोचने का तरीका होगा, ये बैटरी चार्ज होने लगेगी, क्योंकि हर संकल्प, हर संस्कार, हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। और जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होगी, देन वी आर अ गिवर, हम सिर्फ दे रहे हैं, हमें रिश्तों में कुछ भी चाहिए नहीं होगा, अनकंडीशनल हमारे लिए नेचुरल होने लगेगा, बहुत सहज होने लगेगा, क्योंकि हम डिटैच्ड होने लगेंगे। डिटैच्ड बोलने से कोई डिटैच्ड नहीं हो सकता, डिटैच्ड होने के लिए इसको पावरफुल बनाना पड़ता है। आत्मा जितनी पावरफुल उतनी डिटैच्ड, जैसे फिजिकली हम जितने स्ट्रांग उतने इंडिपेंडेंट। जब हम बीमार हो जाते हैं थोड़ा सा, तो हम फिजिकली वीक हो जाते हैं, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, हम कहते हैं कोई मेरा हाथ पकड़े, कोई मुझे उस दूसरे कमरे तक ले जाए, कोई मुझे एक ग्लास पानी दे दे, पर ऐसी जीवन अच्छी नहीं लगती है। तब हम क्या कहते हैं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है, फिजिकली डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है। और इमोशनली कहते हैं अटैचमेंट नेचुरल है, चेक करना है। फिजिकली भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता, कहते मुझे हर थोड़ी चीज के लिए ना इनसे पैसे मांगने पड़ते हैं, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर इमोशनल डिपेंडेंस के साथ क्यों रह रहे हैं कि खुशी अपनी, शांति अपनी, रिस्पेक्ट, प्यार, ये ऐसे चाहिए? ये कंफर्टेबल है क्या? इसी की वजह से तो रिश्ते कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। सो डिटैचमेंट मीन्स इमोशनल इंडिपेंडेंस, उसके लिए पावर हाउस से कनेक्ट होकर सोल पावर को बढ़ाते जाना है। और ये नहीं कि इसको बहुत साल लगने वाले हैं, ये जैसे 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 बढ़ता जाएगा, डिटैचमेंट अपने आप होने लग जाएगी। डिटैचमेंट करनी नहीं पड़ती है, अटैचमेंट करनी नहीं पड़ी थी, अपने आप हो गई थी, डिटैचमेंट भी अपने आप हो जाएगी। बस सोल पावर को बढ़ाना शुरू करना है तो उसके लिए डेली 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ दिन नहीं, थोड़ी देर नहीं, डेली डेली कुछ समय निकालें परमात्मा का ज्ञान और मेडिटेशन, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें. फिर जीवन में कितने भी प्रेशर्स आ जाएं, प्रेशर्स तो हमें पता नहीं है ना, कभी भी आ सकते हैं, बातें तो कभी भी आ सकती हैं, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव बाहर आ जाएं, सामने वाला भी कितने भी उतार चढ़ाव अपने व्यवहार में कर ले, हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. रिश्ता हमेशा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि यहां उतार चढ़ाव नहीं आया, यहां हमेशा स्ट्रांग है. यहां कभी नहीं उतरेंगे तो रिश्ता भी कभी नहीं उतरेगा. चाहे कुछ भी बात बाहर आ जाए तो रिलेशनशिप विल बी ऑलवेज स्ट्रांग एंड इट डज नॉट नीड टू पीपल टू क्रिएट अ स्ट्रांग रिलेशनशिप. हमें लगता है दोनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं, दोनों को स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है एक स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए. एक को स्ट्रांग होने की जरूरत है. एक के स्ट्रांग होने से वो रिश्ता हमेशा स्ट्रांग होगा और जब एक स्ट्रांग और रिश्ता स्ट्रांग तो फिर सामने वाला स्ट्रांग होना ही है. धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो स्ट्रांग जरूर हो जाएंगे क्योंकि उनको उस रिश्ते में इतनी स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है. सो वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आर रिलेशनशिप. इट डज नॉट टेक टू पीपल टू क्रिएट अ रिलेशनशिप. दो लोगों से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता मेरी सोच से बनता है, मेरे नजरिए से बनता है. सोच बदल ली, नजरिया बदल लिया, रिश्ता बदल जाएगा. इसीलिए स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन से जो सबसे पहला बेनिफिट आता है, हम कहते हैं ना, हाउ डिड आई बेनिफिट, कैसे मुझे पता चले कि मेरा मेडिटेशन मेरी स्पिरिचुअल स्टडी राइट है, हमारे रिश्ते सुंदर होते जाएंगे. वो जो गांठें पड़ी थी वो खुलती जाएंगी. हम बहुत इजी और नेचुरल हो जाएंगे अपने रिश्तों में. हमारे रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि संस्कार से संसार बनता है. रिश्ते हमारा संसार है, लेकिन उस संसार को सुंदर बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ संस्कार बनाने पड़ते हैं. तो 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए, अपने मन पर लेकर आइए उनको, जहां आपको गांठों को खोलना है, जहां हर्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है, एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना है, उनको सामने लेकर आइए. पास्ट इज पास्ट, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाते हैं आज. दिस इज अ सोल टू सोल कनेक्शन, आत्मा और आत्मा का कनेक्शन है ये. आई एम अ गिवर इन दिस रिलेशनशिप, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, परमात्मा के प्यार से भरपूर, परमात्मा के ज्ञान से भरपूर. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ परमात्मा की शक्ति से मिला हुआ है और मेरे से इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार एंड सम्मान रेडिएट होता है. आज से मेरी इनके लिए हर सोच एक ब्लेसिंग है, हर वर्ड एक ब्लेसिंग है, दुआ है. आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस रिलेशनशिप. आई एक्सेप्ट देम एज दे आर, दे एक्सेप्ट मी एज आई एम. हमारा रिश्ता स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है, अनकंडीशनल है. ओम शांति.
दोस्तों, आपने सुना हीलिंग रिलेशनशिप्स के बारे में, और सिस्टर शिवानी जी ने जिस सरलता के साथ और जिस विजडम के साथ आप सबके सामने ये बातें रखी हैं, मैं समझता हूं हम सभी इसकी गहराई को और इसकी अहमियत को समझ रहे हैं. और हम सब में से बहुत सारे लोग इस पर काम भी करना शुरू कर चुके होंगे कि हम अपने संबंधों को हील करें, और ये वही सही समय है। आप सबकी तरफ से मैं सिस्टर शिवानी जी का धन्यवाद करता हूं। माइंड बॉडी मेडिसिन के इस दूसरे दिन के शाम के सत्र में आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, और कुछ ऐसे ही अनूठे विचारों के साथ, कुछ ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।
Awakening to a new way of living.
26 दिसंबर 2020 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है।